नगर स्वामी। जब रॉकी स्काईशिप पर सवार होकर थंडरहॉक सिटी के स्काईपोर्ट पहुंचा, तो एलीन और बॉस समेत कुछ गार्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने उसे केबिन से सकुशल बाहर निकलते देखा, तभी सभी ने राहत की सांस ली, खासकर एलीन ने। इस बार रॉकी के मिशन को लेकर एलीन ज्यादा आशावादी नहीं थी। हालांकि उसने माना कि रॉकी के विचार सही थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कामयाब हो पाएगा। उसकी राय में रॉकी की सुरक्षित वापसी ही सबसे अच्छा नतीजा थी, लेकिन चूंकि उसकी अपेक्षाएं अधिक नहीं थी, इसलिए एलीन उस समय पूरी तरह से दंग रह गई जब उसने जहाज से ग्रॉ पत्थरों से भरे चार बैगों को ले जाते देखा। हे प्रभु, क्या ये है? क्या ये हो सकता है? मुट्ठी भर ग्रॉक स्टोन हाथ में लिए एलीन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार इसकी पुष्टि की, यहां तक कि बॉस की तरफ मुड़कर देखा और फिर रूखे स्वर में बोली, क्या ये ग्रॉक स्टोन हो सकता है? बिल्कुल, रॉकी को उसकी प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। न सिर्फ एलीन को इस मिशन से कोई खास उम्मीद नहीं थी, बल्कि खुद रॉकी को भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फिर भी रॉकी आखिरकार कामयाब हो ही गया। इसलिए जब उसने एलीन के चेहरे पर अविश्वास देखा, हालांकि उसने उसे ऊपर से नहीं दिखाया था, तो वह अंदर से सचमुच रोमांचित हो गया। नगरपाल को इस महान सफलता के लिए बधाई। ग्रॉक दानव का शिकार करते हुए आपकी सैन्य संपत्ति विशाल और स्थायी है। जबकि एलीन अभी भी स्तब्ध थी और रॉकी मन ही मन उस पल का आनंद ले रहा था, बॉस, जो एक तरफ खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा, रॉकी को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम किया और जोर से बोला। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। रॉकी भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस इस वक्त ऐसी बातें कहेगा। ये तो साफ साफ चापलूसी थी। ऐसा लगता था कि यह बॉस की शैली बिल्कुल नहीं थी। वहीं वहां मौजूद अन्य लोग, खासकर गार्ड भी ये सुनकर दंग रह गए। बॉस की बात सुनकर सभी पहरेदारों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रॉकी जमीन पर क्या कर रहा था, इसलिए जब उन्हें पता चला कि उसने असल में एक राक्षस को मार डाला है, तो रॉकी के बारे में उनका नजरिया तुरंत बदल गया। इन साधारण पहरेदारों के लिए लगभग एक सदी से इस जमीन पर कब्जा जमाए बैठे राक्षस अजय राक्षस थे। राक्षसों को मारने में सक्षम कोई भी व्यक्ति पूजनीय था। बॉस के शब्द सुनते ही पहरेदारों ने रॉकी को बड़े सम्मान से देखा, अपने ही नगर स्वामी के पराक्रम से चकित। अनजाने में सैनिक और भी अधिक सीधे खड़े हो गए और रॉकी की उपस्थिति में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। गार्ड्स में आए अनजाने बदलाव को रॉकी की नजरों से ओझल नहीं होने दिया और वो फौरन बॉस का इरादा समझ गया। बॉस ने जो कुछ कहा था वो चापलूसी जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वो गार्ड्स को सुनाना चाहता था। बूढ़ी लोमड़ी, रॉकी ने बॉस की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति की और भी अधिक प्रशंसा की। तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? उस समय लिलिया आगे बढ़ी और पहरेदारों को संबोधित करते हुए बोली, इन चीजों को नगर के स्वामी के भवन में ले जाओ और फिर किसी को इनकी कड़ी सुरक्षा के लिए नियुक्त करो, ताकि कोई दुर्घटना न हो। हाँ, हालांकि लिलिया ज्यादा समय से गार्ड्स की कैप्टन नहीं थी, फिर भी उन्होंने थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर का प्रबंधन बेहद कुशलता से किया था। गार्ड्स उनका बहुत सम्मान करते थे। लिलिया के बोलते ही गार्ड्स ने तुरंत ग्रॉक स्टोन से भरे चार बैग ले जाने शुरू कर दिए। रॉकी और लिलिया ने ग्रॉक स्टोन्स के जो चार बैग वापस लाए थे, उनमें से एक बैग को मुश्किल से हिलाने के लिए तीन या चार गार्डों की आवश्यकता पड़ी। आखिरकार वे कपास से नहीं बल्कि ग्रॉक स्टोन से भरे थे और रॉकी और लिलिया दोनों ने क्रमशः शून्य जादू कवच और अपनी स्वयं की ताकत की मदद से उन्हें वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। और जब गार्डों ने धीरे धीरे सभी ग्रॉक स्टोन्स को हटा दिया, तो एलीन ने रॉकी की ओर जिज्ञासा से देखा, नगरपाल, क्या आप वापस जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? ग्रॉक स्टोन्स को हटा दिया गया था, लेकिन रॉकी ने वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था, जिससे लिलिया हैरान थी। एक क्षण मेरा इंतजार करो, कोई और आ रहा है, ये कहते हुए रॉकी ने बॉस की ओर मुड़कर कहा, लॉर्ड बॉस, कृपया आप भी रुकिए। बिल्कुल, बॉस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्काईपोर्ट पर रुकने से पहले कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके कुछ ही देर बाद एक और स्काईशिप बादलों से निकलकर धीरे धीरे स्काईपोर्ट के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। महाराज, यह क्या है? एलीन उस अनजान स्काईशिप को आते देखकर हैरान रह गई, क्योंकि थंडरहॉक सिटी, जो इतना छोटा शहर था, में लोगों का आना जाना आम बात नहीं थी। व्यापार के लिए तय समय पर आने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा साल में एक बार भी किसी और का आना नामुमकिन था। यह मेरा मित्र है जो मुझे जमीन पर मिला था, रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ सहजता से समझाया। और उसी समय फेली, जो स्काईपोर्ट का प्रभारी था, उसके पास दौड़ा, नगरपालिका, ये स्काईशिप, इसकी व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए? रॉकी के सामने खड़े होकर फेली ने सम्मान तो दिखाया, लेकिन वह कुछ असमंजस में भी दिख रहा था। सामान्य परिस्थितियों में स्काई सिटी में डॉक करने के इच्छुक स्काईशिप को कुछ नियमों का पालन करना होता है। जब तक कि वह स्काई सिटी का ही कोई स्काईशिप न हो, सभी विदेशी स्काईशिप को पहले अपना उद्देश्य बताना होता है। उतरने के बाद आधिकारिक तौर पर अंदर जाने की अनुमति मिलने से पहले उन्हें एक निश्चित स्काईपोर्ट टैक्स भी देना होता है। लेकिन इस समय उतरने की तैयारी कर रहा स्काईशिप स्पष्ट रूप से वही था जिसका रॉकी इंतजार कर रहा था, जिससे फेली को ये समझ नहीं आ रहा था कि सामान्य प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, इसलिए उसने वहां आकर पूछने का निर्णय लिया। सब कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जी श्रीमान। ये सुनकर फेली ने रॉकी को सलाम किया और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उनके आदेश के तहत मोटे का स्काईशिप डॉकिंग करने लगा और धीरे धीरे स्काईपोर्ट में उतर गया। जैसे ही स्काईशिप सुरक्षित रूप से उतरा, मोटे अपनी बेटी एक युवा मादा बीस्टमैन के साथ अपने स्काईशिप से बाहर निकला। गार्डों को टैक्स चुकाने के बाद वे सीधे रॉकी की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद मोटे और उसकी बेटी रॉकी और अन्य लोगों के सामने आ गए।
अब तक मोटे की त्वचा की रंगत पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी और जो हाथ कटा हुआ था उस पर अब केवल पट्टी बंधी थी। संभवतः उसकी बेटी उसकी देखभाल कर रही थी।
नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। नगरपालिका अध्यक्ष रॉकी, मेरे पिता को बचाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही वे रॉकी के पास पहुंचे, मोटे ने कृतज्ञता में गहरा झुकते हुए ये कहा और उनकी बेटी ने भी रॉकी के सामने अपना सिर झुकाया। उनकी ओर से कृतज्ञता का ऐसा प्रदर्शन बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, हालांकि रॉकी ने मोटे को थंडरहॉक सिटी में सिर्फ लाया था, लेकिन ये छोटा सा इशारा जीवन रक्षक उपकार माने जाने के लिए पर्याप्त था। मोटे की चोटें स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी जिन्हें वह और उनकी बेटी अकेले संभाल नहीं सकते थे। उन्हें इलाज के लिए स्काई सिटी में एक पेशेवर डॉक्टर ढूंढना जरूरी था। आकाश इतना विशाल है कि स्काई सिटी तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर रॉकी न होता तो पिता पुत्री के लिए एकमात्र विकल्प किसी बड़े आकाशीय शहर में इलाज करवाना होता, जो साल भर एक निश्चित दिशा में तैरता रहता है। लेकिन तब तक यह निश्चित था कि मोटे को बचाया जा सकेगा या नहीं। तो रॉकी की साधारण सी दिखने वाली कार्रवाई वास्तव में मोटे की जान बचाने के बराबर थी। यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस एक मदद है। पिता और पुत्री, जिन्होंने झुककर उसका धन्यवाद किया, की ओर देखते हुए रॉकी हल्के से मुस्कुराया और ज्यादा चिंतित नहीं हुआ। फिर भी उसने मोटे से कहा, थंडरहॉक शहर के नगर स्वामी रॉकी, हमें एक दूसरे को नए सिरे से जानना चाहिए।
तुम वास्तव में रॉकी के नए आत्म परिचय ने, यद्यपि संक्षिप्त, मोटे को सचमुच चौंका दिया था।
मोटे ने बहुत पहले ही देख लिया था कि रॉकी कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी कोई शहर का सरदार होगा। उसने शुरू में सोचा था कि रॉकी कोई मामूली हैसियत वाला रईस होगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी का ओहदा रईसों से कहीं ऊंचा होगा, इतना ऊंचा कि उनके पैरों तले पूरा शहर उसका मालिक होगा। इसलिए एक संक्षिप्त विराम के बाद मोटे ने तुरंत अपनी बेटी को एक घुटने पर बैठने के लिए कहा, नगर के स्वामी, कृपया हमारे पिछले अनादर को क्षमा करें। एक दानव शिकारी होने के नाते मोटे न सिर्फ काफी घूमा फिरा और जानकार था, बल्कि एक औसत बीस्टमैन से कहीं ज्यादा चतुर भी था। जब उसे पता चला कि रॉकी स्काई सिटी का मालिक है, तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसे पूरा एहसास था कि वह रॉकी के इलाके में था और जमीन पर तो शायद यह उतना मायने नहीं रखता, लेकिन स्काई सिटी के अंदर कोई भी शहर के मालिक से मुकाबला नहीं कर सकता था। वह शिष्टाचार के मामले में शहर के मालिक को नाराज नहीं करना चाहता था, जिससे उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी पर बेवजह मुसीबत आ जाए। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, उठो। अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ रॉकी ने मोटे और उसकी बेटी को खड़ा होने दिया। फिर वह लिलिया की ओर मुड़ा और कहा, एक गार्ड की व्यवस्था करो जो उन्हें शहर के जिले में ले जाए और जितनी जल्दी हो सके उनका इलाज कराए। समझा। सिर हिलाते हुए लिलिया ने एक गार्ड को बुलाया और उसे मोटे और उसकी बेटी को ले जाने की व्यवस्था की। पिता और बेटी के कुछ दूर चले जाने के बाद ही रॉकी ने मुड़कर पास खड़े एलिन और वॉस की ओर देखा। एलिन, लॉर्ड वॉस, आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? महाराज, ये जानवर आदमी है। रॉकी के प्रश्न ने एलिन को क्षण भर के लिए अचंभित कर दिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि दूसरा व्यक्ति कौन है और इसलिए वह रॉकी की बात समझ नहीं पाई। इसके बाद रॉकी ने जमीन पर घटित घटनाओं के बारे में बताया और उसके बाद ही एलिन को पता चला कि मोटे कौन था, और अंततः उसे समझ में आया कि रॉकी ने उसे और उसके दादा को क्यों पीछे रखा था। रॉकी चाहता था कि वे यह आकलन करने में उनकी मदद करें कि क्या मोटे उसके लिए उपयोगी हो सकता है।
यद्यपि एलिन रॉकी का इरादा समझ गई थी, फिर भी उसने लापरवाही से बात नहीं की, बल्कि अपने दादाजी की ओर देखा। फिर वो उसने रॉकी की ओर सिर हिलाया, महाराज, यह आदमी काम का है।
हालांकि बॉस के शब्द सरल थे, फिर भी उन्होंने रॉकी को काफी राहत दी। रॉकी ने बॉस को रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह बॉस के विशाल अनुभव से वाकिफ था, खासकर लोगों को परखने के मामले में उसकी नजर न सिर्फ साफ थी बल्कि पैनी भी थी।
इसके तुरंत बाद रॉकी भी बाकी सभी लोगों के साथ स्काईपोर्ट से चला गया।
वह मोटे को भर्ती करने के लिए उत्सुक तो था, लेकिन ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी, न ही कोई जल्दबाजी की जरूरत थी। मोटे की चोटों की गंभीरता को देखते हुए वह थंडरहॉक सिटी में सिर्फ एक दो दिन नहीं रुकेगा। इसके अलावा रॉकी खुद भी काफी व्यस्त था। अब जब उसने ग्ररॉक स्टोन हासिल कर लिया था, तो अगला कदम जल्द से जल्द टनल सिटी पहुंचना था। केवल इटर्नल सिटी में ही वह ग्ररॉक स्टोन बेच सकता था, शायद ऊंची कीमत पर, जो उस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी।
इसलिए अगले दिन उसने एलीन को सिटी लॉर्ड के भवन में बुलाया। एलीन, तुम्हें क्या लगता है ग्ररॉक स्टोन का ये बैच कितने में बिक सकता है? क्या ये थंडरहॉक सिटी की अनाज बिक्री के लिए पर्याप्त है?
अनाज खरीदने के लिए पैसे न होने की समस्या रॉकी और थंडरहॉक सिटी के लिए हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, और यह एक गंभीर मुद्दा रहा है। रॉकी ने अब तक जो कुछ भी किया था उसका मकसद इसी समस्या का समाधान निकालना था।
अब उन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया था और अब परिणाम देखने का समय आ गया था। महाराज, अब बहुत हो गया, एलीन का उत्तर सीधा था, फिर भी इससे रॉकी को राहत की लंबी सांस मिली।
आप विश्वस्त हैं? बिल्कुल पक्का, हल्की मुस्कान के साथ एलीन ने कहा। नगरपाल, ग्ररॉक स्टोन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 15 स्वर्ण सिक्के प्रति किलोग्राम है, और इस बार आप जो वजन लेकर आए हैं उसके आधार पर हम 10,000 से ज्यादा स्वर्ण सिक्के कमा सकते हैं। ये धनराशि थंडरहॉक सिटी के भंडार में जोड़ दी जाएगी, जिससे सर्दियों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी जा सकेगी, यहाँ तक कि एजियोर कॉमर्स गिल्ड से भी, चाहे वे कीमत कितनी भी बढ़ा दें, और हमारे पास फिर भी कुछ बच जाएगा।
थंडरहॉक सिटी के वित्त अधिकारी के रूप में एलेन के पास स्वाभाविक रूप से इस मामले पर सबसे अधिक अधिकार था।
रॉकी जब ग्ररॉक स्टोन से भरा हुआ लौटी तो उसने लगभग पूरी रात आराम नहीं किया था, पूरी शाम विभिन्न तरीकों से ग्ररॉक स्टोन के बारे में बाजार की जानकारी इकट्ठा करने में बिता दी थी। इसलिए उसने रॉकी को जो कुछ भी बताया था वह बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि सोच समझ कर की गई गणना का नतीजा था। और उसकी यह बात सुनकर रॉकी को अंततः राहत महसूस हुई। थंडरहॉक सिटी के सामने जो कठिनाई थी उसे अंततः आसानी से दूर किया जा सका। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया। एलीन, क्या हमें एजोर कॉमर्स गिल्ड से भोजन आयात करना होगा?
वह एलीन थोड़ा रुकी, लेकिन जल्दी ही रॉकी की बात का मतलब समझ गई और गहरी सोच में डूब गई।
रॉकी के प्रश्न से स्पष्ट रूप से पता चला कि वह एजोर कॉमर्स गिल्ड से असंतुष्ट था और अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग करने का उसका इरादा था। बेशक इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आखिरकार यार्न का आखिरी लेन देन भले ही अंततः सफल रहा हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया सुखद तो बिल्कुल नहीं थी। इसकी सीधी वजह यह थी कि एजियोर कॉमर्स गिल्ड ने अपनी कीमतों में थंडरहॉक सिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया था।
पिछले व्यापार के सफल होने का कारण यह नहीं था कि इससे दोनों पक्ष संतुष्ट थे, बल्कि इसका कारण यह था कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
विकल्पों की यह कमी केवल थंडरहॉक सिटी के लिए थी। इस संदर्भ में रॉकी के लिए व्यापारिक साझेदारों को बदलना तर्कसंगत था, विशेषकर अब जब उनके पास पैसा था। पैसा होने से उन्हें चुनने का अधिकार मिला। इसलिए एलिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने थोड़ी देर बाद बोलने से पहले ध्यान से सोचा। यदि आप सचमुच हमारे व्यापारिक साझेदार सिटी लॉर्ड को बदलना चाहते हैं तो इटर्नल सिटी की यह यात्रा एक अच्छा अवसर है। इटर्नल सिटी आकाश में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहां चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बड़ी और छोटी शाखाएं हैं। हम कोई भी योजना बनाने से पहले स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, मैं यही सोच रहा था। एलिन के शब्दों से रॉकी ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसके भी यही विचार थे। इस बार इटर्नल सिटी की यात्रा करने का उनका कारण आंशिक रूप से दानवों को बेचना था, तथा दूसरा नए व्यापारिक साझेदारों को खोजने की संभावना तलाशना था। पिछली बार एजियोर कॉमर्स गिल्ड का प्रदर्शन रॉकी के लिए बेहद निराशाजनक रहा था। ये साफ था कि उन्होंने जानबूझकर अपनी कीमतें बढ़ा दी थी, क्योंकि वे थंडरहॉक सिटी को एक छोटा शहर समझते थे, और जियाशी के व्यवहार के साथ रॉकी लंबे समय से सहयोग के लिए एक नया कॉमर्स गिल्ड ढूंढने पर विचार कर रहे थे। और अब जब उसके पास पैसा है तो वह कहीं भी भोजन खरीद सकता है, तो फिर वह एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ सहयोग क्यों जारी रखे और उनका शोषण क्यों सहे? हालांकि एलिन ने फिर कहा, नगरपालिका प्रमुख, यदि हम वास्तव में एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ सहयोग बंद कर देते हैं तो हमें न केवल भोजन खरीदने के लिए बल्कि सूत आयात करने के लिए भी एक नया कॉमर्स गिल्ड ढूंढना होगा। एजियोर कॉमर्स गिल्ड का आकार नगण्य नहीं था। थंडरहॉक सिटी ने उनसे धागा और भोजन दोनों आयात करने की उनकी मांग मान ली थी, इसलिए वे दीर्घकालिक व्यापार के लिए राजी हुए। अगर रॉकी एजियोर कॉमर्स गिल्ड से भोजन आयात न करने का फैसला करता तो उसे धागा आयात करने के लिए भी कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ती। एलिन ने महसूस किया कि रॉकी को ये याद दिलाना उसका कर्तव्य है, लेकिन रॉकी को ये बात अच्छी तरह पता थी। एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ सहयोग खत्म करने की उसकी इच्छा में पहले से ही इस बात का ध्यान रखा गया था। इसके अलावा रॉकी की महत्वाकांक्षाएं वाकई बहुत बड़ी थीं। वह इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ एजियोर कॉमर्स गिल्ड से अलग होकर एक नया साथी ढूंढने के लिए नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे तो ये भी लग रहा था कि थंडरहॉक सिटी को भी इस मौके का फायदा उठाकर कुछ बदलाव करने चाहिए। थंडरहॉक सिटी, रॉकी ने सोचा कि अब कुछ बदलाव का समय आ गया है। सिटी लॉर्ड के रूप में अपनी पहचान को लेकर रॉकी विरोधाभासों से भरा था। हालांकि इस हैसियत ने उसे दूसरों की तुलना में एक बेहतर शुरुआत दी, लेकिन इसने उस पर भारी दबाव भी डाला, और थंडरहॉक सिटी का सिटी लॉर्ड होने के नाते ये बोझ और भी बढ़ गया। थंडहॉक सिटी की कमजोरी किसी को भी साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ 1,000 निवासियों वाला एक छोटा सा शहर जिसमें लगभग हर चीज का अभाव था, उद्योग, वाणिज्य, सेना वगैरह। अगर इस दुनिया में विकास सूचकांक जैसी कोई चीज होती तो थंडहॉक सिटी का सूचकांक बेशक शून्य होता। ऐसी परिस्थितियों में रॉकी का मानना था कि थंडहॉक सिटी के लिए बदलाव जरूरी है। अब मन रूंस की अनूठी तकनीक के साथ रॉकी की क्षमता असीम थी, इसलिए उसे थंडहॉक सिटी के विकास और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करना था। केवल एक शक्तिशाली थंडहॉक सिटी के साथ ही वह मन रूंस के लाभों का सही मायने में लाभ उठा सकता था। लेकिन वह थंडहॉक सिटी को वास्तव में कैसे मजबूत कर सकता है? रॉकी ने इस प्रश्न पर काफी समय तक विचार किया और अंततः इसका उत्तर मिला, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ही कुंजी थी किसी भी शहर के विकास के लिए, चाहे वह स्काई सिटी हो या जमीन पर बसा कोई भी शहर। अर्थव्यवस्था सर्वोपरि थी क्योंकि यह हर चीज की नींव थी, इसके बिना बाकी सब खोखली बातें थीं। इसलिए यदि रॉकी थंडहॉक सिटी को मजबूत बनाना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से उसे पहले अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहली बात जो उन्होंने सोची वह ये थी कि थंडहॉक सिटी अब अपनी आजीविका के लिए केवल कपड़ा उद्योग पर निर्भर नहीं रह सकती। शहर की आबादी कम थी और कोई असली कारखाने नहीं थे, तथाकथित कपड़ा उद्योग पूरी तरह से शारीरिक श्रम पर आधारित था। यह विचार कि स्काई सिटी की आर्थिक जीवन रेखा हाथ से बुने हुए कपड़े थे, हास्यास्पद रूप से बेतुका था। रॉकी का मानना था कि थंडहॉक शहर की आर्थिक जीवन रेखा को अन्य उद्योगों या सीधे बाजार की ओर स्थानांतरित करना होगा, तभी शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इसके बाद थंडहॉक सिटी के आर्थिक मॉडल को बदलना अनिवार्य था। वर्तमान में थंडहॉक सिटी अभी भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत काम कर रही थी, जिसमें सभी संसाधन आवंटन निर्णय सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा लिए और वितरित किए जाते थे। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग को ही लें, हर तिमाही सिटी लॉर्ड्स मैंशन तय करता था कि कितना सूत आयात करना है, फिर वे उस सूत को निवासियों को एक निश्चित कीमत पर बेचते थे। जब निवासी सूत से कपड़ा बुन लेते तो सिटी लॉर्ड्स मैंशन उसे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर वापस खरीद लेता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेच देता। इस प्रक्रिया में नगरपाल का भवन सब कुछ संभालता था और निवासियों को बस मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाना होता था। ये नियोजित अर्थव्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इस आर्थिक मॉडल में बहुत सारी कमियां थीं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाए बिना थंडहॉक शहर कभी विकसित नहीं हो सकता था। रॉकी ने इटर्नल सिटी की अपनी आगामी यात्रा को एक अवसर के रूप में देखा और आशा व्यक्त की कि वह इसका उपयोग थंडहॉक सिटी में सुधारों को शुरू करने में करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अगले दिन एलिन को बुलाया और अपने विचार उससे साझा किए। आखिरकार थंडहॉक सिटी की वित्तीय अधिकारी होने के नाते वह आर्थिक मामलों को रॉकी से कहीं बेहतर समझती थी। महाराज, मैं समझता हूँ कि आपका आशय क्या है, रॉकी ने एलिन को अपने विचार बताए तो वह गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने कहा, हे प्रभु, आपके विचार वाकई बेहतरीन हैं और थंडहॉक सिटी को बदलने की जरूरत है। बस क्या, हम चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते, रॉकी की ओर देखने के बाद एलिन ने कहा। महाराज, थंडहॉक सिटी के निवासी पहले से ही आपके द्वारा बताए गए आर्थिक मॉडल के आदि हो चुके हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, हाँ बिल्कुल सही कहा, नियोजित अर्थव्यवस्था। एलिन को लगा कि यह शब्द बिल्कुल सही है। निवासी पहले से ही उस नियोजित अर्थव्यवस्था के आदि हैं जिसका आपने जिक्र किया। अगर आप अचानक इस मॉडल को बदल दें और थंडहॉक सिटी के बाजार को बाहरी बाजारों से जोड़ दें तो निवासी इसका असर झेल नहीं पाएंगे और इससे काफी उथल पुथल मच सकती है। तो आपका क्या सुझाव है? एलिन की बातें बिल्कुल सही थीं और रॉकी की चिंता भी यही थी। हालांकि थंडहॉक सिटी के लिए बदलाव जरूरी थे, रॉकी को डर था कि वहां के निवासी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि उसने एलिन से सलाह ली। महाराज, हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं ताकि निवासियों को धीरे धीरे अनुकूलित होने का मौका मिल सके। एलिन बहुत तेज थी। रॉकी के विचार सुनने के बाद उसने तुरंत मुख्य बिंदुओं को समझ लिया और एक उपाय सोचा, थंडहॉक सिटी के निवासियों को धीरे धीरे अपने अनुकूल ढालने का। यह एक स्पष्ट कथन जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडहॉक शहर की आबादी बहुत कम थी, लेकिन कम आबादी के साथ बदलावों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो सकता है। अगर थंडहॉक शहर की आबादी 1,000 नहीं बल्कि 1,00,000 होती तो नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल साबित होता। सौभाग्य से केवल लगभग 1,000 निवासियों के साथ उन्हें नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाना बहुत आसान होता। ये कहने के बाद एलिन ने रॉकी को एक एक करके अपने विचार बताए। अगले कुछ दिनों में दोनों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और थंडहॉक शहर में बदलाव लाने और उसके निवासियों को इन बदलावों के अनुकूल बनाने में मदद करने पर विचार विमर्श किया। परिणाम स्वरूप एक सप्ताह जल्दी ही बीत गया और इसके अंत तक रॉकी और एलिन ने थंडहॉक सिटी के आर्थिक सुधारों के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली थी, जिसे इटर्नल सिटी पहुंचने पर लागू किया जाना था। इसके बाद लिलिया ने रॉकी को ढूंढा और उसे बताया कि मोटे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। थंडरहॉक सिटी के आर्थिक सुधारों की तैयारी में व्यस्त होने के कारण रॉकी बीस्टमैन के बारे में लगभग भूल ही गया था। लिलिया के याद दिलाने पर ही उसे याद आया। क्या उसकी चोट ठीक हो गई है? क्या इतनी जल्दी ठीक होना संभव है? उसका हाथ टूट गया है, ये 3 से 5 महीने तक ठीक नहीं होगा, लिलिया ने सिर हिलाते हुए और चिढ़कर कहा। क्या मैं उससे बात करूं? रॉकी और लिलिया दोनों ही बीस्टमैन मोटे की बहुत कद्र करते थे, उसकी मौजूदा विकलांगता के बावजूद। वे उसे अब भी प्रतिभाशाली मानते थे, कम से कम थंडरहॉक सिटी के लिए जरूरी प्रतिभा तो। उसकी ताकत और उसका अनुभव थंडरहॉक सिटी के लिए अनमोल थे, इसलिए अगर वे उसे भर्ती कर पाते तो रॉकी को ही फायदा होता। हालांकि मोटे के ठीक होने और रॉकी के व्यस्त होने के कारण उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला था। अब जबकि मोटे न केवल अस्पताल से बाहर आ चुका था बल्कि वे इटर्नल सिटी पहुंचने वाले भी थे, उसके जाने से पहले उससे बात करने के लिए बहुत कम समय बचा था। एक क्षण विचार करने के बाद रॉकी ने अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और बोला, मैं स्वयं जाकर उससे बात करूंगा। इस तरह से अधिक ईमानदारी दिखाई देती है। रॉकी ने मोटे से व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह उस राक्षस को अपने अधीन रहने के लिए राजी कर सकता है। जहां तक उनके दृष्टिकोण का सवाल है, लिलिया ने स्वाभाविक रूप से उन्हें पूरा समर्थन दिया। चूंकि उनका लक्ष्य मोटे को भर्ती करना था, इसलिए निस्संदेह यह एक शहर के स्वामी रॉकी के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्धता का संकेत था कि वह स्वयं मोटे से मिले, जो निश्चित रूप से किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। इस प्रकार कुछ ही समय बाद रॉकी और लिलिया सिटी लॉर्ड के भवन से निकल गए और एक गाड़ी में सवार होकर शहर के जिले में चले गए। थंडरहॉक सिटी आने के बाद से मोटे रॉकी से नहीं मिला था, लेकिन रॉकी उसकी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ था। पहला, क्योंकि थंडरहॉक सिटी बड़ी नहीं थी और मोटे के पास जाने के लिए बहुत कम जगहें थीं, और दूसरा, क्योंकि लिलिया ने गश्त कर रहे गार्डों को पहले ही उस पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दे दिया था। इसलिए सिटी लॉर्ड के भवन से निकलकर वे सीधे गाड़ी से उस सराय में पहुंचे जहां मोटे रह रहा था और कुछ ही देर बाद वहां पहुंच गए। नगरपाल, आप यहां कैसे आए? जब मोटे ने अपने सराय के कमरे का दरवाजा खोला और रॉकी को अपने सामने खड़ा देखा तो वह लंबा जानवर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि वह सिटी लॉर्ड को दोबारा देख पाएगा। क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? स्तब्ध मोटे को देखकर रॉकी ने मजाक में कहा। दुर्भाग्यवश वह अपने और मोटे के बीच के अंतर को भूल गया, क्योंकि उसके शब्द सुनकर उस राक्षस का चेहरा क्षण भर में खराब हो गया। मेरे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोलते बोलते मोटे ने जल्दी से अपना विशालकाय शरीर एक तरफ हटा लिया और रॉकी तथा लिलिया को कमरे में आमंत्रित किया। नगर स्वामी, नमस्कार। जैसे ही रॉकी कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक बेहद तीखी आवाज सुनाई दी। स्रोत की ओर देखते हुए उसने मोटे की बेटी, उस युवा मादा राक्षसी को देखा। मोटे की बेटी लगभग 14 या 15 साल की लग रही थी, लेकिन क्योंकि वह एक जानवर थी, उसकी शक्ल और फिगर लगभग लिलिया के बराबर थी। अब वह रॉकी का उत्साह से स्वागत करती थी। नमस्ते, रॉकी ने मोटे की बेटी की ओर हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराया। दुसा, बकवास बंद करो। रॉकी के पीछे पीछे आते हुए मोटे ने अपनी बेटी को उसके शिष्टाचार की कमी के लिए डांटा। अपने कमरे में वापस जाओ, यहाँ सिटी लॉर्ड को परेशान मत करो। ओह, पिता की डांट सुनकर दुसा मुंह बनाकर सिर झुकाकर फिर अनिच्छा से अपने कमरे में लौट आई। हालांकि उसने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर भी उसने एक दरार खुली छोड़ दी और बाहर झांकने लगी। मोटे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी चोटों का हालचाल जानने आया हूँ। दूसा की छोटी मोटी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए रॉकी ने मोटे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा। नगरपालिका, कृपया बैठिए। रॉकी ने चाहे जितना भी आराम करने को कहा, मोटे को आराम करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने झट से रॉकी को बैठने के लिए कहा और खुद बिना बैठे खड़ा हो गया। आप भी बैठिए, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। रॉकी के बार बार अनुरोध करने के बाद ही मोटे अंततः उसके सामने बैठ पाया, हालांकि वह अभी भी काफी विवश दिखाई दे रहा था। आपकी चोटें कैसी हैं? ये देखकर कि मोटे तनाव में है, रॉकी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके साथ बातचीत करने लगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरी चोटें अब चिंता का विषय नहीं है। अच्छी बात है। ये सुनकर रॉकी ने सिर हिलाया और फिर मोटे के कटे हुए हाथ की ओर देखा, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और स्पष्ट रूप से पेशेवर चिकित्सा उपचार दिया गया था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि अब ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। रॉकी ने फिर अपनी नजर मोटे के चेहरे पर घुमाई, एक पल के लिए उसे देखा और पूछा, मोटे, क्या तुम अभी भी दानव शिकारी बने रहने की योजना बना रहे हो? यह रॉकी के अचानक पूछे गए प्रश्न से मोटे अचंभित रह गया। फिर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया, महाराज, मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मैं अब राक्षसों का शिकार कर पाऊंगा। बोलते समय उसने अनजाने में अपने कटे हुए हाथ को छुआ और आह भरी। उसका हाथ कट गया था और यद्यपि उसे समय पर उपचार मिल गया था और कुछ समय के आराम के बाद वह ठीक हो गया था, फिर भी वह अब दानव शिकारी नहीं रह सकता था। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? मोटे का उत्तर पूरी तरह से रॉकी की उम्मीदों के अनुरूप था, इसलिए थोड़ा रुकने के बाद वह फिर बोला। इस प्रश्न पर मोटे, जो पहले कुछ उलझन में था, तुरंत समझ गया कि रॉकी उससे मिलने क्यों आया था और वह ये प्रश्न क्यों पूछ रहा था। इस प्रकार कुछ देर सोचने के बाद मोटे ने फिर कहा, महाराज, मेरी बेटी और मेरे पास कुछ बचत है, इसलिए मैंने अभी कोई योजना नहीं बनाई है। तो फिर क्या आप मेरे साथ रहने में रुचि रखेंगे? बातचीत के इस बिंदु पर रॉकी ने बात को घुमाना बंद कर दिया और सीधे मुख्य विषय पर आ गया तथा अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता दिया। महाराज, मैंने इस पर विचार नहीं किया है, रॉकी की ओर देखते हुए मोटे ने उत्तर दिया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही चतुराईपूर्ण थी। यह उत्तर प्रभावी रूप से रॉकी को यह उत्तर दे रहा था कि वह थंडरहॉक सिटी में रहने की योजना नहीं बना रहा था। ये वास्तव में मोटे के विचारों को प्रतिबिंबित करता था। वह कई दिनों से थंडरहॉक सिटी में रह रहा था और यद्यपि उसने अधिकांश समय अस्पताल में बिताया था, फिर भी वह शहर के बारे में बहुत कुछ जान चुका था और जानता था कि यह कैसा है। मोटे को लगा कि ऐसा शहर उसके लिए बहुत छोटा है। दरअसल जैसा कि लिलिया ने पहले अनुमान लगाया था, मोटे 5वें स्तर का योद्धा था या चोट लगने से पहले ही 6ठे स्तर का योद्धा बनने की कगार पर था। अब भी सिर्फ एक हाथ के साथ उसमें कम से कम 4थे स्तर के योद्धा जितनी ताकत थी, जिसे कम नहीं माना जाता था। इतनी ताकत के साथ मोटे राक्षसों का शिकार करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए किसी भी स्काई सिटी में नौकरी जरूर पा सकता था और यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। यदि ऐसा था तो वह थंडरहॉक सिटी जैसे छोटे शहर में क्यों रहेगा? मोटे, जो दूर दूर तक घूम चुका था, कई मध्यम और बड़े स्काई सिटीज में घूम चुका था, उन शहरों में वह थंडरहॉक सिटी में रुके बिना ही अपने और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित कर सकता था। हालांकि ये तो बस उसके मन में ही था, वह इसे जोर से कह नहीं सकता था। आखिरकार रॉकी भले ही एक छोटे से शहर का राजा था, फिर भी वह शहर का राजा था और उसकी हैसियत में अंतर के कारण मोटे ने अपने विचार यथासंभव चतुराई से व्यक्त किए। मैं तो मोटे तौर पर यही सोच रहा था। मोटे को यह उम्मीद नहीं थी कि रॉकी ने उसकी चतुराईपूर्ण प्रतिक्रिया सुनकर नाराजगी नहीं दिखाई बल्कि मुस्कुराया, मानो उसने इसकी पहले से ही उम्मीद कर ली थी। इसके बाद रॉकी ने अपना मुंह खोला और कहा, मोटे, तुम्हें लगता है कि थंडरहॉक सिटी बहुत छोटी है ना? महाराज, मैंने बिल्कुल नहीं। मोटे ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया। अगर वह अब मान गया तो सचमुच मूर्ख होगा। हालांकि रॉकी ने उसे बीच में रोकने के लिए बस अपना हाथ हिलाया, फिर कहा, मोटे, क्या भविष्य के लिए यही तुम्हारी एकमात्र महत्वाकांक्षा है? मैं, क्या आप सोचते हैं कि अब आप केवल किसी छोटे मोटे सरदार के लिए रक्षक के रूप में काम कर सकते हैं या किसी संघ में कोई छोटी मोटी नौकरी पा सकते हैं और बस? रॉकी के शब्दों ने मोटे को तुरंत ही स्तब्ध कर दिया। वह काफी देर तक बोल नहीं सका क्योंकि उसके अधिकांश विचार ठीक वही थे जो रॉकी ने व्यक्त किए थे। जब उसने कहा कि उसने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, तो वह बस रॉकी को टालने के लिए था। मोटे अपने भविष्य के लिए योजना कैसे नहीं बना सकता था, खासकर जब वह एक पिता भी था। उसकी योजनाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रॉकी ने बताई थी, एक बड़े स्काई सिटी की ओर जाना, फिर वहां किसी रईस का रक्षक बनना। उसकी क्षमताओं के साथ एक हाथ कट जाने पर भी यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उनका मानना था कि अपनी मौजूदा हालत में अगर वो ऐसी जिंदगी जी पाएं तो काफी अच्छा होगा। गार्ड की नौकरी से होने वाली कमाई से उनका और उनकी बेटी का गुजारा हो जाएगा और कुछ पैसा भविष्य के लिए भी बच जाएगा। जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो उसकी शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ पाएंगे और इससे उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये मोटे के विचार थे, कोई ऊंची महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ ठोस और यथार्थवादी विचार। स्पष्टतः रॉकी ने इसे उस दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए उसने कहा, मोटे, तुम अब राक्षसों का शिकार करने नहीं जा सकते, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह एक अवसर हो सकता है। मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ यहीं रह सकोगे। मेरा विश्वास करो, मेरा अनुसरण करना किसी छोटे मोटे रईस की सेवा करने से कहीं बेहतर होगा। महाराज, मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, मोटे ने उत्तर दिया। रॉकी के शब्द सीधे सादे थे, लेकिन साथ ही सच्चे भी, एक ऐसी भावना जिसे मोटे महसूस कर सकता था। उसे थोड़ा सा यकीन भी हुआ, लेकिन आखिरकार यह एक अहम मामला था और उसे इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत थी। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर सोचोगी और बाद में मुझे अपना जवाब दोगी, रॉकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी जल्दबाजी के हम 2 दिन में इटर्नल सिटी पहुंच जाएंगे, तुम कभी भी निकल सकती हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इंतजार कर सकते हैं और मुझे कुछ समय दे सकते हैं क्योंकि आप जल्द ही थंडरहॉक सिटी का रूपांतरण देखेंगे। एक बार ऐसा हो जाए तो आपको अपना निर्णय लेने में देर नहीं लगेगी। मोटे के साथ बातचीत के बाद रॉकी लिलिया को सिटी लॉर्ड के भवन में वापस ले आया। उनके विचार में मोटे के साथ यह मुलाकात सफल रही, क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ कह दिया था जो वह कह सकते थे, और यह स्पष्ट था कि मोटे प्रभावित हो गया था। रॉकी को लगा कि इतना ही काफी है। हालांकि कुछ लोगों की नज़र में मोटे के साथ उनकी मुलाकात बिल्कुल भी सफल नहीं रही थी, और इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मोटे को अपना अधीनस्थ बनने के लिए राजी नहीं किया था। कारण बहुत सरल था, रॉकी अब जो कुछ दे सकता था वह बहुत कम था। फिर भी रॉकी को अब भी यकीन था कि उसने मोटे को हटा दिया है, क्योंकि उसने मोटे की आंखों में अनिच्छा देखी थी। हालांकि इस बीस्टमैन ने अपना एक हाथ खो दिया था और बार बार कहता था कि वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में संतुष्ट रहेगा, फिर भी उसकी निगाहें अनिच्छा से भरी थीं। इस अनिच्छा से रॉकी को लगा कि मोटे के साथ अभी भी कुछ चर्चा होनी बाकी है। उसका विचार सही था, क्योंकि मोटे वास्तव में बहुत अनिच्छुक था, और इसी अनिच्छा के कारण उसने रॉकी को तुरंत अस्वीकार नहीं किया। ये समझना वाकई आसान था। मोटे छठे स्तर तक पहुंचने की कगार पर एक योद्धा था, एक ऐसी ताकत जो पहले से ही बहुत दुर्जेय मानी जाती थी, और यही वजह थी कि उसने दानव शिकारी का खतरनाक पेशा चुना था। ऐसी परिस्थितियों में एक हाथ खो देने के बाद मोटे कैसे एक महत्वहीन जीवन जीने को तैयार हो सकता है? इसलिए हालांकि वह रॉकी के प्रस्ताव पर तुरंत सहमत नहीं हुआ, मोटे ने भी उसे मना नहीं किया। इसके अलावा उसने थंडरहॉक शहर को तुरंत छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि रॉकी ने बताया था कि थंडरहॉक शहर में जल्द ही बदलाव होने वाले हैं। मोटे वहीं रुकना चाहता था और देखना चाहता था कि शहर क्या बनता है, और फिर समय आने पर अपना फैसला लेना चाहता था। कुल मिलाकर रॉकी और मोटे के बीच बातचीत काफी सहज रही। रॉकी ने आखिरकार मोटे को थंडरहॉक सिटी में ही रहने के लिए मना लिया, और जब तक मोटे वहीं रहा उसे विश्वास था कि बीस्टमैन की अंतर्दृष्टि और अनुभव के साथ थंडरहॉक सिटी में आने वाले बदलावों को देखने के बाद मोटे जरूर सही चुनाव करेगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड के भवन में वापस लौटने पर रॉकी तुरंत फिर से व्यस्त हो गया। वे इटर्नल सिटी पहुंचने वाले थे और अभी भी कई चीजें थी जिनकी उसे तैयारी करने की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही दो दिन बीत गए। एक महीने से भी ज्यादा समय तक आसमान में धीरे धीरे उड़ने के बाद थंडरहॉक सिटी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई, इटर्नल सिटी। रॉकी ने इस देव नगरी के बारे में बहुत समय पहले सुना था, इसलिए वह लिलिया और एलिन के साथ सुबह सुबह स्काईपोर्ट जाने के लिए उत्साहित था। ये है शाश्वत शहर। स्काईपोर्ट प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर और सीधे इटर्नल सिटी जाने के लिए स्काईशिप पर चढ़ने की तैयारी करते हुए रॉकी दंग रह गया। स्काईपोर्ट प्लेटफॉर्म पर खड़े होते ही उसने दूर से इटर्नल सिटी को साफ साफ देख लिया था और वह पूरी तरह से हैरान था। ये शहर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? थंडरहॉक सिटी के स्काईपोर्ट में खड़े होकर दूर तक देखते हुए रॉकी को आसमान में तैरता एक विशाल शहर दिखाई दिया। इस शहर का आकार इतना विशाल था कि उसने लगभग उसकी पूरी दृष्टि को घेर लिया। ये देखते हुए कि थंडरहॉक सिटी वास्तव में इटर्नल सिटी के पास नहीं था, कम से कम कुछ हजार मीटर की दूरी पर था। इतनी दूर से देखने पर भी अनंत शहर इतना विशाल था, कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि यह शहर कितना भव्य था। भगवान का शहर, सचमुच अपने नाम के समान ही महान। स्काईपोर्ट में खड़े होकर कुछ देर तक देखते हुए रॉकी अपने अंदर से यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, गॉड सिटी नाम सचमुच व्यर्थ नहीं था। उसकी आंखों के सामने का शहर वास्तव में एक विशाल इकाई के रूप में योग्य था। क्या सारा सामान जहाज पर लाद दिया गया है? धीरे धीरे होश में आते हुए रॉकी ने एलिन की ओर देखा और फिर पूछा। सभी कुछ तैयार है। रॉकी का इस बार इटर्नल सिटी जाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। एक ओर वह अपने पास मौजूद ग्रॉक स्टोन को बेचना चाहता था, और दूसरी ओर उसे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ढूंढना था जो थंडरहॉक सिटी को भोजन की आपूर्ति कर सके, साथ ही कुछ अन्य छोटे मोटे काम भी। इस प्रकार एलिन इस यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि सभी व्यापारिक मामले उसकी जिम्मेदारी थे। जहाज पर चढ़ो अनंत शहर के लिए। ये देखकर कि सब कुछ ठीक था, रॉकी ने उत्साह से अपना हाथ हिलाया और फिर सभी को स्काईशिप पर ले गया और इटर्नल सिटी की ओर जाने की तैयारी करने लगा। महाराज कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ठीक उसी समय रॉकी के स्काईशिप पर चढ़ने के ठीक बाद और उसके उड़ान भरने से पहले एक जोरदार चीख सुनाई दी। इसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए उन्हें स्काईपोर्ट पर एक लंबी आकृति को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये बीस्टमैन मोटे था। मोटे को रॉकी के स्काईशिप तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने पुकारा, महाराज क्या आप इस बार ग्रॉक स्टोन का व्यापार करने जा रहे हैं? हाँ महाराज, मैं कई बार इटर्नल सिटी गया हूँ और वहां से भली भांति परिचित हूँ। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सचमुच ये तो बहुत अच्छा होगा। रॉकी ने मोटे के सक्रिय रूप से उसके पास आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और स्वाभाविक रूप से वह बहुत प्रसन्न हुआ। दरअसल रॉकी ने पहले ही मोटे से मदद मांगने के बारे में सोचा था, क्योंकि एक प्रमाणित दानव शिकारी होने के नाते मोटे निश्चित रूप से दानवों से जुड़े कामों से एलिन से ज्यादा परिचित था। उसकी मदद मिलने से चीजें काफी आसान हो जाती। हालांकि मोटे की चोटों को देखते हुए रॉकी ने आखिरकार मदद मांगने से परहेज किया, लेकिन यहां बीस्टमैन अपनी मर्जी से आगे आ रहा था। ये कहना जरूरी है कि मोटे द बीस्टमैन वाकई प्रभावशाली था। दूर दूर तक यात्रा करने और दुनिया के बहुत से हिस्से देखने के बावजूद वह बीस्टमैन की सरल ईमानदारी को नहीं भूला था। इसने रॉकी के प्रति उसके सम्मान और कृतज्ञता को न केवल एक आम आदमी का एक नगर स्वामी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता बना दिया, बल्कि उसे और भी गहरा और व्यक्तिगत बना दिया। मोटे की नज़र में रॉकी चाहे किसी भी हैसियत का हो, उसने एक बार उसकी जान बचाई थी, एक नेकी का काम जिसे मोटे हमेशा याद रखेगा। इसलिए भले ही रॉकी कोई सरदार न हो, मोटे का उसके प्रति रवैया ज्यादा नहीं बदलेगा और वह जरूर इस एहसान का बदला चुकाएगा। यद्यपि रॉकी मोटे की पहल से प्रसन्न था, फिर भी अपनी चोटों के बारे में सोचकर वह चिंतित हो गया। क्या आपकी चोटें ठीक हैं? वे अधिकतर ठीक हो चुके हैं। अपने आधे हाथ पर पट्टी बांधकर बीस्टमैन ने जोर से हंसते हुए संकेत दिया कि कोई समस्या नहीं थी। बीस्टमैन की शारीरिक क्षमता वाकई जबरदस्त थी। अगर किसी इंसान को इतनी गंभीर चोटें लगी हों तो उसे ठीक होने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं, लेकिन मोटे ने सिर्फ एक हफ्ते आराम किया था और वह पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये देखकर रॉकी ने केवल सिर हिलाया और फिर मोटे की ओर हाथ हिलाया, आओ। और इसलिए मोटे भी स्काईशिप पर चढ़ गया, और एक बार जब वह सवार हो गया तो रॉकी ने स्काईशिप को धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का आदेश दिया और इटर्नल सिटी की ओर उड़ चला। पुनश्चक कृपया नई किताब की सिफारिश करें और उसे बुकमार्क करें। आपकी हर सिफारिश और बुकमार्क लिटिल डिटेक्टिव के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। हमें आपके भरपूर सहयोग की उम्मीद है। भरपूर सहयोग, भरपूर सहयोग। आकाशयान ऊपर उठा और धीरे धीरे थंडहॉक शहर के रक्षात्मक जाल से बाहर निकल गया, फिर दूर स्थित अनंत शहर की ओर बढ़ गया। लिलिया, उधर देखो। धनुष पर खड़े होकर रॉकी एक बार फिर उतना ही उत्साहित था जितना पहली बार स्काईशिप पर सवार होने पर था। लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि इस छोटी सी यात्रा में ही उसने इतने सारे दृश्य देख लिए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उदाहरण के लिए, इस समय वह दूर स्थित विशाल आकाश नगरी की ओर आश्चर्यचकित होकर इशारा कर रहा था। ये स्काई सिटी इटर्नल सिटी नहीं थी, बल्कि यह इटर्नल सिटी से आकार में छोटी थी, फिर भी थंडहॉक सिटी से काफी बड़ी थी, और ये थंडहॉक सिटी से बिल्कुल भी दूर नहीं थी। दोनों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी। और जब रॉकी ने बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अनंत शहर के चारों ओर कई हजार किलोमीटर की दूरी पर दर्जनों स्काई सिटीज स्थित हैं। इन स्काई सिटीज का आकार अलग अलग था। सबसे छोटे शहर थंडहॉक सिटी के समान थे, लेकिन अधिकांश मध्यम से बड़े स्काई सिटीज थे। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य रॉकी ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह धनुष पर उत्साह से चिल्ला रहा था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि लिलिया और एलिन के भी मुंह खुले हुए थे तथा वे अपने सामने के दृश्य को देखकर अविश्वास व्यक्त कर रहे थे। समूह में से केवल मोटे ही अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिया, क्योंकि रॉकी, लिलिया और एलिन ने तो सिर्फ इटर्नल सिटी का नाम सुना था, लेकिन पहली बार वहां जा रहे थे, जबकि मोटे नहीं। वह पहले भी कई बार वहां जा चुका था, इसलिए उसके सामने का दृश्य कुछ असामान्य नहीं था। मोटे, क्या ये सभी स्काई सिटीज हमारी तरह अनंत शहर के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ हैं? मोटे को वहां शांति से खड़ा देखकर रॉकी ने जल्दी से उससे पूछा, क्योंकि वह रॉकी से कहीं अधिक अनंत शहर के बारे में जानता था। जी महाराज, मोटे ने सिर हिलाया और फिर रॉकी को विस्तार से बताया, महाराज इस तरह के आकाशीय शहर हर पल अनंत शहर के आसपास मौजूद रहते हैं और यह सबसे व्यस्त समय भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण दिनों में अनंत शहर के आसपास के क्षेत्र में 100 से ज्यादा आकाशीय शहर दिखाई देते हैं और ये दृश्य सचमुच शानदार होता है। ये बहुत ज्यादा खर्चीला है। मोटे के शब्दों ने रॉकी को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसने कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह कल्पना ही नहीं कर पाया कि इटर्नल सिटी के चारों ओर 100 से ज्यादा स्काई सिटीज के साथ कैसा होगा, यह उसकी कल्पना से परे था। इस बीच जैसे जैसे आकाशयान धीरे धीरे अनंत शहर के निकट पहुंचा, आकाश में अधिक से अधिक आकाशयान दिखाई देने लगे। ये आकाशयान विभिन्न आकारों में आते थे तथा इनमें नागरिक जहाज, व्यापारी जहाज और यहाँ तक कि युद्धपोत भी होते थे, जो आकाश में जीवंत मछलियों की तरह उड़ते रहते थे। कुछ दूर उड़ते थे, अन्य निकटवर्ती आकाश शहरों की ओर जाते थे। सभी बहुत व्यस्त रहते थे। जैसे ही रॉकी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था, एक छोटा सा स्काईशिप, नहीं एक होवरबोर्ड उनके पास आया। होवरबोर्ड पर केवल 2 लोग थे, लेकिन दोनों ने शून्य जादुई कवच पहन रखा था। जैसे ही रॉकी ने देखा कि होवरबोर्ड निकट आ रही है, वह पहले ही बहुत करीब आ चुकी थी, और फिर उसने देखा कि नाव पर मौजूद लोगों में से एक ने अपने फ्लोटिंग आर्मर का उपयोग करके हवा में उड़ान भरी और रॉकी के स्काईशिप के साथ धीरे धीरे तैरने लगा। सुप्रभात महोदय और महोदया, मैं इटर्नल सिटी से एक गश्ती अधिकारी हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप यहाँ व्यापार के लिए आए हैं? यह गश्ती अधिकारी के प्रश्न ने रॉकी को उलझन में डाल दिया, क्योंकि यह अनंत शहर की उसकी पहली यात्रा थी और वह अभी भी स्थानीय नियमों और विनियमों के बारे में स्पष्ट नहीं था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब गश्ती अधिकारी निकट आया तो रॉकी का ध्यान उसके द्वारा पहने गए शून्य जादू कवच पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति जो केवल एक गश्ती अधिकारी था शून्य जादुई कवच से सुसज्जित होगा, और ऐसा कवच तो बिल्कुल नहीं जो उसके अपने कवच से स्पष्ट रूप से बेहतर था। स्वर्ग इटर्नल सिटी की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा थी कि वह एक मामूली गश्ती अधिकारी को इतने उच्च गुणवत्ता वाले शून्य जादुई कवच उपलब्ध करा सकता था। इतने बड़े खर्च को देखकर खुद सिटी लॉर्ड रॉकी भी अवाक रह गया। हम पहली बार इटर्नल सिटी का दौरा कर रहे हैं, एलीन ने पूछा, क्या व्यापार के लिए कोई मतभेद हैं? चूंकि रॉकी का अभिमान उस तुच्छ गश्ती अधिकारी द्वारा बुरी तरह से आहत था, इसलिए उसके बगल में बैठी एलीन ने अधिकारी से पूछा, क्योंकि वे वास्तव में यह नहीं समझ पाए थे कि दूसरे पक्ष ने अभी क्या कहा था। ओह, अगर आप यहाँ व्यापार के लिए आए हैं तो कृपया अपने स्काईशिप को व्यापार बंदरगाह पर खड़ा करें, अगर नहीं तो सामान्य बंदरगाह की ओर चलें। हर बंदरगाह के प्रवेश कर अलग अलग हैं और केवल व्यापार बंदरगाह पर खड़े स्काईशिप को ही माल लादने की अनुमति है। सामान्य बंदरगाह इसकी अनुमति नहीं देते। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे तस्कर माना जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कृपया अनंत शहर के नियमों का पालन करें। तो यह ऐसा है? गश्ती अधिकारी का स्पष्टीकरण सुनने के बाद एलीन ने मोटे की ओर देखा और उसे अपनी ओर हल्का सा सिर हिलाते हुए देखने के बाद ही उसे आश्वस्त महसूस हुआ। हम यहाँ व्यापार के लिए हैं। ठीक है, एलीन का जवाब सुनकर गश्ती अधिकारी ने तुरंत कहा, इटर्नल सिटी में व्यापार कर प्रत्येक छोटे स्काईशिप के लिए प्रतिदिन 50 स्वर्ण सिक्के है, कुल कर प्रस्थान के समय चुकाना होगा। कृपया प्रवेश के लिए कतार में लगने हेतु अपने स्काईशिप को इन निर्देशांकों पर ले जाएं। बोलते समय तैरते कवच से सुसज्जित गश्ती अधिकारी ने एलीन को निर्देशांकों का एक सेट दिया और फिर बिना पीछे देखे उड़ गया। प्रवेश कर इतना महंगा क्यों है? जहाज पर गार्ड को निर्देशांक बताने के बाद एलीन ने अप्रसन्नता से मुंह बना लिया। उसके चेहरे पर स्पष्ट परेशानी दिख रही थी। जाहिर है कि उसे प्रवेश कर बहुत अधिक लग रहा था। बंदरगाह में प्रवेश पर प्रतिदिन 50 स्वर्ण मुद्राएं लगती थी। अगर वे 10 दिन रुकते तो कर के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं लगती। ये बहुत महंगा था। नगरपालिका, ऐसा लगता है कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। भारी प्रवेश कर के कारण एलीन को रॉकी की ओर रुक करना पड़ा, क्योंकि वे निश्चित रूप से इटर्नल सिटी में लंबे समय तक रहने का खर्च नहीं उठा सकते थे। ओह ठीक है, हिलते हुए रॉकी को अंततः होश आया, फिर उसने सिर हिलाया। इसके कुछ ही देर बाद उनका स्काईशिप धीरे धीरे गश्ती अधिकारी के दिए गए निर्देशांक की ओर उड़ चला और प्रवेश के लिए कतार में लग गया। इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट पर पहुंचने पर रॉकी और अन्य लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इटर्नल सिटी का स्काईपोर्ट बहुत विशाल था। हे भगवान, ये बंदरगाह थंडहॉक शहर के पूरे जिले से भी बड़ा है। जैसे ही स्काईशिप धीरे धीरे नीचे उतरा, धनुष पर खड़ा रॉकी आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट का आकार बहुत बड़ा था, यहां तक कि थंडहॉक सिटी के जिला आकार से भी अधिक। इस विशाल स्काईपोर्ट में सैकड़ों स्काईशिप खड़े थे तथा किसी भी समय दर्जनों या सैकड़ों स्काईशिप बंदरगाह से उड़ान भरते या उतरते रहते थे, जिससे पूरा क्षेत्र अत्यधिक व्यस्त रहता था। स्काईपोर्ट का इतना बड़ा आकार रॉकी को पूरी तरह से हैरान कर गया। थंडहॉक सिटी में भी एक स्काईपोर्ट था, लेकिन इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट की तुलना में थंडहॉक का स्काईपोर्ट एक छोटे से प्लेटफॉर्म से ज्यादा कुछ नहीं था और दोनों की कोई तुलना ही नहीं थी। क्या ये देव नगरी की शक्ति है? इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट की एक झलक देखना ही रॉकी के लिए इटर्नल सिटी की जबरदस्त ताकत को समझने के लिए काफी था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह शहर आसमान का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बन गया था, और कोई आश्चर्य नहीं कि इटर्नल सिटी के साथ स्थित शीर्ष 10 दिव्य शहरों को आकाश के 10 राक्षस कहा जाता था। उनकी ताकत वाकई अद्भुत थी। जब स्काईशिप इटर्नल सिटी के स्काईपोर्ट पर उतरा तो रॉकी और उसके साथियों को एक गाड़ी मिली और फिर वे इटर्नल सिटी के शहरी क्षेत्र की ओर चल पड़े। चूंकि यह एक व्यापारिक शहर था, इटर्नल सिटी का स्काईपोर्ट शहर के बहुत करीब था और आधे घंटे की गाड़ी की सवारी उन्हें शहर के क्षेत्र के अंदर ले गई। शहरी क्षेत्र में पहुंचकर रॉकी को सबसे पहले वहां की चहल पहल भरी गतिविधियों का एहसास हुआ। ये वाकई लाखों की आबादी वाला एक विशाल महानगर था, जहां सड़कें और गलियां लोगों की भीड़ से भरी हुई थी, जिससे यह असाधारण रूप से जीवंत था। और दूसरा प्रभाव जो इसने उन पर छोड़ा वह था इसकी समृद्धि। इटर्नल सिटी की समृद्धि रॉकी की कल्पना से भी परे थी। उसने पहली बार 7-8 मंजिला इमारतें भी यहीं देखी थी। आपको पता ही होगा कि थंडहॉक सिटी में सबसे ऊंची इमारत उसके सिटी लॉर्ड का महल था, जो महज 2 मंजिला किला है। लेकिन इस जगह पर रॉकी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन से भी बड़ी और अधिक शानदार इमारतें हर जगह थी। कुछ रेस्तरां तो उसके मैंशन के आकार के लगभग बराबर थे। इस जीवंत और रंगीन दृश्य ने रॉकी को बहुत बड़ा झटका दिया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक देहाती व्यक्ति हो जो पहली बार बड़े शहर में आया हो और उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल उसकी सोच कुछ ज्यादा ही आत्महीन थी। इटर्नल सिटी वाकई बहुत समृद्ध थी और यह समृद्धि ऐसी थी जिसकी तुलना थंडहॉक सिटी से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये सिर्फ थंडहॉक सिटी और इटर्नल सिटी के बीच तुलना तक ही सीमित थी। वास्तव में इटर्नल सिटी की समृद्धि पूरे स्काई सिटी में सर्वोच्च स्तर पर थी। कमजोर थंडहॉक सिटी की तो बात ही छोड़िए, बाकी स्काई सिटीज भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। यहां तक कि बड़े स्काई सिटीज भी, जो समृद्धि के मामले में इटर्नल सिटी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं थंडहॉक सिटी को ऐसा बना दूंगा। गाड़ी में बैठे सड़क पर ट्रैफिक की हलचल देखकर रॉकी को न सिर्फ ईर्ष्या हुई, बल्कि उसने एक मन ही मन संकल्प भी लिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने थंडहॉक शहर को बिल्कुल ऐसा ही बनाएगा, बल्कि इटर्नल सिटी से भी ज्यादा समृद्ध। इस तरह गाड़ी आगे बढ़ी। शहर में प्रवेश करने के बाद उन्हें अपने गंतव्य एक उचित आकार के होटल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मोटे ने इस होटल की सिफारिश की थी, ज्यादा महंगा नहीं और शहर के भीतर व्यापार केंद्र के बहुत पास। मोटे जब भी इटर्नल सिटी आते यहीं रुकते। कहाँ ठहरना है इस बारे में चाहे वह रॉकी हो, लिलिया हो या यहाँ तक कि एलीन हो, उनमें से कोई भी विशेष रूप से चिंतित नहीं था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे अनंत शहर में आनंद के लिए नहीं आए थे, भले ही यह पूरे आकाश में सबसे अच्छा मनोरंजन शहर था। मोटे, क्या आप हमें अब हंटिंग एक्सचेंज ले चलेंगे? होटल में दो कमरे चुनने के बाद रॉकी ने मोटे से कहा कि वह उन्हें सीधे हंटर्स गिल्ड के पास ले जाए। तथाकथित हंटिंग एक्सचेंज दरअसल दानव व्यापार में विशेषज्ञता वाला एक बड़ा बाजार था। दानवों से जुड़ी सभी खरीद फरोख्त गतिविधियां यहीं होती थीं, जहां कई विक्रेता और खरीदार लेन देन को बेहद आसान बना देते थे। महाराज, क्या आप थोड़ा आराम नहीं करना चाहेंगे? रॉकी की ओर देखते हुए मोटे को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी में होगा। सचमुच रॉकी बहुत जल्दी में था। आपको ये समझना होगा कि शहर में रुकने वाले प्रत्येक दिन के लिए स्काईपोर्ट पर खड़े स्काईशिप को 50 स्वर्ण सिक्कों का डॉकिंग शुल्क देना पड़ता था, जो नकदी की कमी से जूझ रहे रॉकी के लिए एक बड़ी राशि थी, इसलिए उसका यहाँ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। इन परिस्थितियों में होटल पहुंचने के तुरंत बाद समूह लगभग तुरंत ही वहां से चला गया और फिर वे गाड़ी लेकर सीधे हंटिंग एक्सचेंज पहुंचे। कहना पड़ेगा, मोटे ने जो होटल सुझाया था वो भले ही देखने में भले ही ज्यादा आकर्षक न लगे, लेकिन उसकी लोकेशन वाकई बहुत अच्छी थी। वे लगभग 15 मिनट में ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। महाराज, ये हंटिंग एक्सचेंज है। बैक कोट। गाड़ी से उतरने के बाद मोटे ने सड़क के उस पार इशारा किया और रॉकी और उसके साथी भीड़ भाड़ वाली सड़क पार कर गए, जहां उन्हें एक व्यापारिक घर दिखाई दिया जो 5 मंजिला था और रॉकी के सिटी लॉर्ड्स हवेली से 2 गुना बड़ा था। हे भगवान, ये जगह सचमुच बहुत बड़ी है। व्यापारिक घराने पर नजर डालने के बाद रॉकी अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भव्य होगा। महाराज, यह इटर्नल सिटी है जहां पूरे आकाश में सभी दानव शिकारी, यदि संभव हो, अपना व्यापार करना चुनते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा खरीदार भी हैं। इसके अलावा किसी भी लेन देन की निगरानी और गारंटी इटर्नल सिटी द्वारा की जाती है और किसी भी मुद्दे को भी इटर्नल सिटी द्वारा ही संभाला जाएगा, इसलिए यहां का व्यापारिक घराना स्वाभाविक रूप से काफी बड़ा है। अच्छा, ऐसा है। मोटे का स्पष्टीकरण सुनने के बाद रॉकी ने सिर हिलाया और फिर अपने समूह को चौड़ी सड़क पार करते हुए सीधे व्यापारिक घर की ओर ले गया। व्यापारिक घराने की लॉबी में प्रवेश करने पर सबसे पहले जो चीज नजर आई वह थी एक मैना नोटिस बोर्ड, जो इतना बड़ा था कि उसे देखने के लिए किसी को भी अपना सिर पीछे झुकाना पड़ता था। ये 10 मीटर से भी अधिक आकार का था, जिस पर घने स्क्रॉलिंग नोटिस लगे थे। जब रॉकी और उसकी कंपनी ने नजदीक जाकर बारीकी से निरीक्षण किया तो पता चला कि यह सभी लेन देन की जानकारी थी। गुना गुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एंटीलोप डायमंड हॉर्न के लिए उच्च मूल्य की पेशकश कर रहा है। इच्छुक पार्टियां कृपया चैम्बर के प्रतिनिधि से संपर्क करें। गुना 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 मूल्य पर बातचीत की जा सकती है। गुना गुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स विभिन्न दानव कोर थॉक में खरीद रहा है। उचित मूल्य का आश्वासन दिया गया है। इच्छुक पार्टियों को ट्रेडिंग हाउस की दूसरी मंजिल पर गुना गुना दुकान में विवरण पर चर्चा करने के लिए स्वागत है। बिक्री के लिए पृथ्वी ड्रैगन दानव त्वचा की एक बड़ी मात्रा। मूल्य पूछताछ के लिए कृपया गुना 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 से संपर्क करें। ग्रॉक स्टोन की दीर्घकालिक खरीद। मूल्य पर बातचीत की जा सकती है। इच्छुक पार्टियों का ट्रेडिंग हाउस की दूसरी मंजिल पर दुकान गुना 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 में चर्चा करने के लिए स्वागत है। बोर्ड पर स्क्रॉलिंग नोटिस सभी राक्षसों से संबंधित लेन देन के बारे में थे, जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं दोनों की पोस्टिंग शामिल थी। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें देखकर चक्कर आ रहा था, और नोटिस बोर्ड के नीचे रॉकी और उसके साथियों जैसे कई लोग भी थे जो ध्यान से उसे देख रहे थे। इन लोगों के पहनावे से साफ जाहिर था कि ये व्यापारी नहीं थे, और अगर व्यापारी नहीं भी थे तो जाहिर है कि ये जरूर व्यापार के लिए यहां आए राक्षस शिकारी होंगे। व्यापारिक घराना बहुत बड़ा है, इसलिए सभी के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए यह नोटिस बोर्ड स्थापित किया गया था। रॉकी नोटिस बोर्ड की सामग्री देखकर चकित था। वहीं उसके बगल में खड़े मोटे ने बताया, ये संदेश हर पल अपडेट होते रहते हैं। जो शिकारी यहां राक्षसों को बेचने आते हैं उन्हें केवल इस जानकारी का पालन करके व्यापारियों को ढूंढना होता है, ताकि वे जल्दी से लेन देन पूरा कर सकें, जो बहुत सुविधाजनक है। मोटे, यहां दी गई किसी भी जानकारी में कीमतें नहीं बताई गई हैं। क्या सभी व्यापारी इसी तरह काम करते हैं? उसी समय एलिन ने अपना सिर घुमाया और मोटे से पूछताछ की। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब मोटे से पूछा गया तो उसने अजीब तरह से अपना बड़ा सा सिर खुजलाया। दरअसल मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है। जब भी मैं यहाँ व्यापार करने आता हूँ तो नोटिस बोर्ड पर दी गई जानकारी के आधार पर सीधे व्यापारियों के पास जाता हूँ, इसलिए मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यद्यपि मोटे औसत पशु मानव से कहीं अधिक चतुर था, फिर भी उसमें पशु मानव की कुछ विशिष्ट विशेषताएं विद्यमान थीं, जैसे कि वह बहुत सीधा था और गणनात्मक मामलों को परेशान करने वाला मानता था, जैसा कि एलिन ने अभी अभी पूछा था, एक ऐसा विषय जिस पर उसने पहले कभी विचार नहीं किया था। मोटे की नज़र में जब तक वह अपने शिकार किए हुए राक्षसों को बेच सकता था, तब तक कीमत थोड़ी ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता था। आखिरकार वह दोनों तरह से कमा ही रहा था। उसका जवाब सुनने के बाद एलिन ने सिर हिलाया और फिर रॉकी की ओर देखा। प्रभु कृपया एक क्षण यहीं रुकें, मैं व्यापारिक जानकारी की जांच करना चाहती हूँ। ये कहकर एलिन ने दूसरों की बात अनसुनी कर दी और अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। वह नोटिस बोर्ड के नीचे खड़ी हो गई, लगातार स्क्रॉल हो रही सूचनाओं को तेजी से पलट रही थी और लगातार अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिख रही थी। ये स्पष्ट था कि वहां पहुंचने पर एलिन कुछ उत्साहित थी और अब वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। एलिन अब सचमुच बहुत उत्साहित थी, क्योंकि सभी लेन देन के प्रति उसकी एक सहज संवेदनशीलता थी। मोटे से कुछ प्रश्न पूछने के बाद उसने कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इसका मतलब था कि रॉकी और उसके साथियों के पास करने को कुछ नहीं था और मोटे भी उसी स्थिति में था। हालांकि वह उस जगह से वाकिफ था, लेकिन वह व्यापार विशेषज्ञ एलिन से कहीं कमतर था और कोई मदद भी नहीं कर पा रहा था। इस स्थिति में रॉकी ने एक सुझाव दिया। मोटे, क्या तुम हमें घुमा सकते हो? राक्षसों को खरीदने के अलावा यहाँ के व्यापारियों को उन्हें बेचना भी चाहिए, है ना? महाराज, हाँ, मोटे ने सिर हिलाया, फिर बोला, इस एक्सचेंज में राक्षसों से जुड़े लगभग सभी खरीदार और विक्रेता इकट्ठा होते हैं। अगर महाराज को किसी चीज की जरूरत होगी तो आपको वह जरूर यहाँ मिल जाएगी। बातचीत के दौरान वह रॉकी और लिलिया को हॉल के अंदर ले गया और फिर सीढ़ियों से ऊपर एक्सचेंज की दूसरी मंजिल पर ले गया। हंटिंग एक्सचेंज 5 मंजिला था। पहली मंजिल के हॉल में मुख्यतः सूचना प्रसार और खातों के निपटान का काम होता था, जबकि दूसरी मंजिल से आगे विभिन्न व्यापारियों की स्वतंत्र दुकानें थीं। जैसा कि मोटे ने बताया, इस एक्सचेंज में खरीदार और विक्रेता दोनों थे। दानव शिकारी जो यहाँ राक्षस बेचने आते थे, उनके अलावा कई लोग राक्षस खरीदने भी आते थे। बेशक जो लोग राक्षसों को खरीदने आए थे, वे पूरा राक्षस नहीं खरीदते थे, बल्कि उसके कुछ हिस्से खरीदते थे, जैसे कि राक्षस का सींग, राक्षस की खाल या राक्षस का कोर इत्यादि। इस स्थिति में जब रॉकी ने मोटे के मार्गदर्शन में दूसरी मंजिल में प्रवेश किया तो उसने जल्दी से अलग अलग दुकानों को देखा, जिससे उसे तुरंत एक शॉपिंग मॉल में घूमने का एहसास हुआ और यह एक लग्जरी शॉपिंग मॉल जैसा लगा। यह क्या है? रॉकी यूं ही एक दुकान में घुसा और देखते ही काउंटर के अंदर एक लंबा सींग रखा हुआ था। सींग भूरे सफेद रंग का था, लगभग 1.5 मीटर लंबा, लेकिन रूलर जितना सीधा, जो कि काफी अनोखा था। इसलिए काउंटर पर कुछ देर तक इसे देखने के बाद रॉकी खुद को पूछने से नहीं रोक सका। महाराज, यह एक जंगली जहरीले दानव का सींग है, बेहद कठोर। बस साधारण पॉलिश करके इसे सीधे हथियार बनाया जा सकता है, या जादुई पत्थरों से जड़कर इसे मन हथियार भी बनाया जा सकता है, मोटे ने समझाया। शिकारी सही कह रहा है, दुकान से बाहर निकले एक आदमी ने कहा। उसकी पोशाक देखकर लग रहा था कि वह दुकान का मालिक है। रॉकी के पास आकर उस आदमी ने कहा, महाराज, ये सचमुच जंगली जहर का सींग है। जंगली जहर दानव का सबसे कीमती हिस्सा यही सींग है। जादुई ऊर्जा हथियार बनाने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। एक व्यापारी होने के नाते मालिक स्वाभाविक रूप से लोगों को परखने में माहिर था, इसलिए उसने पहली नजर में ही पहचान लिया कि रॉकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। हालांकि ये सामान्य बात थी, हालांकि रॉकी का पहनावा कोई खास भव्य नहीं था, फिर भी वह नगर का स्वामी था और उसके पास कई उच्च स्तरीय कुलीन वस्त्र थे। इसके अलावा एक नगर का स्वामी होने के नाते उसका स्वाभाविक व्यवहार उसे आम लोगों से अलग करता था, इसलिए उसकी असाधारण हैसियत पर ध्यान दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये सींग विशेष रूप से मन हथियार बनाने के लिए उपयुक्त क्यों है? रॉकी मालिक की बात से बहुत प्रभावित हुआ और आगे पूछताछ करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका प्रश्न सुनकर मालिक को रॉकी की असामान्य स्थिति के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया, क्योंकि जितनी अधिक महान पहचान होती है उतना ही कम वे राक्षसों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मालिक ने कहा, मेरे स्वामी, जंगली जहर के सींग में निम्न स्तर के राक्षसों के बीच मन के प्रति सबसे मजबूत अनुकूलन क्षमता है, जिसमें उत्कृष्ट चालकता है। इस प्रकार इस सींग से बने मन हथियार सामान्य मन हथियारों की तुलना में कम से कम 10% अधिक शक्तिशाली हैं। इसका इतना असर होता है। इस सींग की कीमत कितनी है? रॉकी ने सर हिलाकर सहजता से जंगली जहर के सींग की कीमत पूछी। 15,000 स्वर्ण सिक्के। ये देखकर कि रॉकी ने कीमत के बारे में पूछताछ की है, दुकान मालिक ने खुशी खुशी एक आंकड़ा सामने रख दिया। हालांकि उस संख्या ने रॉकी को लगभग डरा दिया। सिर्फ एक सींग और इसकी कीमत 15,000 स्वर्ण मुद्राएं। इतनी ऊंची कीमत रॉकी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी और उसे बोलने में भी शब्द नहीं सूझ रहे थे। सौभाग्य से उसी समय पीछे से एक गहरी आह निकली, जिसके बाद मोटे की आवाज आई, महाराज शायद हमें अन्य दुकानों में देखना चाहिए। ठीक है, मोटे का सुझाव सुनकर रॉकी तुरंत सहमत हो गया और फिर बिना पीछे देखे चला गया। उसकी दृढ़ता ने दुकान मालिक को अचंभित कर दिया। दरअसल उसे जंगली जहर के सींग में सच्ची दिलचस्पी थी। चूंकि यह सींग जादुई पत्थरों से मन को बढ़ाता था, इसलिए उसने सोचा कि क्या यह मन रून्स को भी बढ़ाएगा। इसलिए वह प्रयोग के लिए सींग खरीदना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना महंगा होगा। उसने अनुमान लगाया था कि सींग की कीमत लगभग 1,000 स्वर्ण मुद्राएं होंगी, जो उसके लिए सस्ती तो नहीं थी, लेकिन अगर वह अपनी कमर कस ले तो वह उसे खरीद सकती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जंगली जहर वाले सींग की कीमत उसके अनुमान से 10 गुना ज्यादा थी। ऐसे राक्षस सींग पर हजारों स्वर्ण सिक्के खर्च करना रॉकी की क्षमता से बाहर था, इसलिए उसने मोटे के हस्तक्षेप को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। मोटे, क्या जंगली जहर का वह सींग सचमुच 15,000 स्वर्ण मुद्राओं के लायक था? रॉकी ने पूछा। अभी भी उसे छोड़ने में कुछ हिचकिचाहट हो रही थी, वह वास्तव में उसे अपने हाथों में लेना चाहता था। उपर्युक्त दुकान से निकलने के बाद थोड़ा असंतुष्ट रॉकी ने मोटे से पूछा, वह वास्तव में हॉर्न ऑफ द वाइल्ड पॉइजन खरीदने में बहुत रुचि रखता था। महाराज, जंगली जहर का सींग सचमुच मन हथियार बनाने के लिए एक बढ़िया सामग्री है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, दुकानदार ने कहा। दुकानदार को आपके कुलीन होने का अंदाजा हो गया होगा और उसने जानबूझकर इतनी ऊंची कीमत लगाई होगी। दरअसल अगर आप इसे सचमुच चाहते हैं तो यह आपको 8,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा में नहीं मिल सकता। 8,000 स्वर्ण सिक्के! इस संख्या ने रॉकी की आशाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि 8,000 सोने के सिक्के 15,000 सोने के सिक्कों की कीमत का लगभग आधा थे, फिर भी यह रॉकी के बजट से काफी बाहर था। बेशक वह 8,000 सोने के सिक्के बना सकता था, लेकिन वह एक दानव के सींग के लिए इतना पैसा कभी खर्च नहीं करेगा। अतः कोई अन्य विकल्प न होने के कारण रॉकी को हॉर्न ऑफ द वाइल्ड पॉइजन को पूरी तरह से छोड़ना पड़ा और फिर वह दूसरे स्टोर में चला गया। इसके बाद वह लिलिया और मोटे हंटिंग एक्सचेंज में घूमने लगे और रास्ते में अलग अलग दुकानों पर रुके। उन्होंने भले ही ज्यादा कुछ न खरीदा हो, लेकिन इस अनुभव ने रॉकी को राक्षसों से जुड़े व्यापारों के बाजार भावों का एक सामान्य अंदाजा दिया और उसे कई तरह के सामानों से परिचित कराया। ये कहना जरूरी है कि राक्षसों से जुड़े सभी व्यापार अविश्वसनीय रूप से लाभदायक थे। जंगली जहर का सींग जैसी वस्तुएं यहाँ आम थीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा होती थी, और यहाँ तक कि सबसे आम चीजों की कीमत भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं होती थीं। रॉकी के लिए, जो यहाँ कुछ खरीदना चाहता था, इतनी ऊंची कीमतें अच्छी भी थीं और बुरी भी। उसके पास इन चीजों पर खर्च करने के लिए हजारों सोने के सिक्के नहीं थे। रॉकी ने अपने लिए सिर्फ 1,000 सोने के सिक्कों की अधिकतम सीमा तय कर रखी थी, वह इतनी ही सीमा वह वहन कर सकता था। वास्तव में 1,000 स्वर्ण सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, इससे उच्च गुणवत्ता वाले जादुई ऊर्जा उपकरण भी खरीदे जा सकते थे, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ ये कहीं भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि चूंकि राक्षसों से संबंधित वस्तुएं इतनी अधिक कीमतों पर बेची जा सकती थी, इसलिए रॉकी इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह अपने ग्ररॉक स्टोन को कितने में बेच सकेगा। पहले एलिन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि ग्ररॉक स्टोन 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्कों में बिक सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था जो उसने दूसरे व्यापारियों से सुना था। असली कीमत हंटिंग एक्सचेंज के बाजार पर निर्भर करेगी। इससे रॉकी उत्सुकता से भर गया, इसलिए यद्यपि वह यहाँ कुछ भी खरीदने में असमर्थ था, फिर भी वह प्रसन्न रहा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अनजाने में एक्सचेंज की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। मोटे के अनुसार एक्सचेंज में बिकने वाली वस्तुएं हर मंजिल पर क्रमशः महंगी और उच्च स्तरीय होती गईं। पांचवीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ उच्च स्तरीय दानव वस्तुओं का हो गया, जहां कोई भी बेतरतीब वस्तु 1,00,000 से ज्यादा स्वर्ण सिक्कों की कीमत पा सकती थी। हालांकि ऐसा होने के बावजूद जैसे ही रॉकी ने तीसरी मंजिल पर स्थित पहली दुकान में कदम रखा, वह तुरंत एक वस्तु की ओर आकर्षित हो गया। क्या ये राक्षस का दांत है? रॉकी ने एक नज़र शोकेस में रखे एक दांत पर डाली। दांत लगभग 1 फुट लंबा था और शोकेस में रखी बाकी चीजों की तुलना में उसका धूसर रंग कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने रॉकी का ध्यान तुरंत खींच लिया। यह मुझे पूरा यकीन नहीं है। मोटे ने शोकेस को करीब से देखने के लिए उसके पास गया, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी वह ये नहीं पहचान सका कि वह दांत किस राक्षस का था। दुकानदार, ये किस तरह का राक्षस दांत है? ये देखकर कि मोटे भी इसे नहीं पहचान सका, रॉकी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उसने सीधे स्टोर के मालिक से पूछने का निर्णय लिया। महाराज, ईमानदारी से कहें तो हम भी नहीं जानते कि ये दांत किस राक्षस का है। रॉकी द्वारा पूछे जाने पर मालिक के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। ये दांत कई वर्षों से हमारी सूची में है और प्रारंभिक रिकॉर्ड बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं, इसलिए मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह किस राक्षस का था। लेकिन निश्चिंत रहें, इस दांत की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है और इसका आकार खंजर बनाने के लिए एकदम सही है। अगर इसका इस्तेमाल मन हथियार बनाने के लिए भी किया जाए तो ये सामान्य सामग्रियों से कहीं बेहतर होगा। इस दांत के लिए कितना? मालिक की बात खत्म होते ही रॉकी ने तुरंत पूछताछ की। 1200 स्वर्ण सिक्के। ये स्पष्ट था कि दुकानदार इस अज्ञात राक्षसी दांत को बेचना चाहता था, इसलिए बताई गई कीमत बहुत अधिक नहीं थी। रॉकी की आंखें चमक उठी जब उसने कीमत सुनी, उसे यह स्वीकार्य था। हालांकि दांत की उत्पत्ति अज्ञात थी, रॉकी उसे प्रयोग के लिए खरीदना चाहता था, इसलिए उसे इसकी उच्चतम श्रेणी की आवश्यकता नहीं थी। ये सोचते हुए वह लिलिया की ओर देखने लगा, जाओ और एलिन को बुलाओ। हालांकि दांत बहुत महंगा नहीं था, लेकिन रॉकी को लगा कि कीमत पर बातचीत की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए उसने एलिन को बुलाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनमें से कोई भी उससे बेहतर मोलभाव नहीं कर सकता था। इसके तुरंत बाद लिलिया एलिन को साथ लेकर वापस लौट आई। महाराज, आप फिर से बेतहाशा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जैसे ही लिलिया ने उसे पाया, एलिन ने मुंह बनाकर और दुखी चेहरे के साथ रॉकी का सामना किया। उसने रॉकी को बोलने का मौका भी नहीं दिया और अचानक बोल पड़ी, ऐसी चीजें खरीदने की क्या जरूरत है महाराज? मैंने कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर से पहले ही समझौता कर लिया है। ये सौदा पूरा होने के बाद वे हमें 10 आदमखोर दानव के दांत उपहार में देंगे। महाराज, कृपया वापस चले जाइए, मुझे यहाँ और कोई परेशानी मत दीजिए। मुंह बनाते हुए एलिन ने रॉकी से शिकायत की, और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एलिन के शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, विशेषकर दुकानदार, जो उसकी बात से भयभीत हो गया। कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर, जिसका उल्लेख एलिन ने किया है, पूरे स्काई सिटी में सबसे शक्तिशाली चैम्बरों में से एक है। कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर के साथ व्यापार करने के लिए इन लोगों की पृष्ठभूमि कैसी है? और एलिन ने यह भी बताया कि दूसरा पक्ष 10 राक्षसी दांत उपहार में देगा, जो दुकानदार के लिए और भी अविश्वसनीय था। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए कि एक आदमखोर राक्षस के दांत की कीमत भी लगभग 2000 सोने के सिक्के ही होती। इतनी कीमती चीजें उपहार में पाने के लिए उन्होंने कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर के साथ कितनी बड़ी डील तय की थी। सदमे के कारण जब दुकानदार ने रॉकी की ओर दोबारा देखा तो उसके चेहरे के भाव पहले से बदल गए थे। वह स्पष्ट रूप से रॉकी और उसके साथियों की पृष्ठभूमि को समझने में असमर्थ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दुकानदार भयभीत हो गया था, क्योंकि रॉकी भी एलिन की बातें सुनकर चौंक गया था। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि वे वहां क्या बेचने आए थे, और यह बात एलिन द्वारा बताए गए अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों के आसपास भी नहीं थी। हालांकि चूंकि रॉकी काफी समय से एलिन के साथ था, उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और फिर दो बार खांसते हुए कहा, एलिन, अभी मेरे बारे में बात मत करो, इस दांत को देखो, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। बकवास, एक्सचेंज की तीसरी मंजिल पर क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं? बातचीत करते करते वे काउंटर के पास पहुंच गए। एलिन ने अपने होंठ भींचे और काउंटर में रखे दांतों को गौर से देखा, फिर मालिक की तरफ देखा, बॉस, इसकी कीमत क्या है? 1200 सोने के सिक्के। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि यहाँ आने के बाद एलिन के कार्यों ने दुकानदार को सचमुच चौंका दिया, इसलिए जब उसने उससे इस तरह पूछा तो दुकानदार ने कुछ हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, वह बहुत दोषी लग रहा था। छी, एलिन ने अधीरता से मालिक की ओर देखा, ये चीज मेरे परिवार को पसंद है, आपकी किस्मत इसे हमें बेच रही है, ज्यादा से ज्यादा 500 सोने के सिक्के, वरना मैं उन्हें इसे खरीदने नहीं दूंगी। यह दुकानदार ने तुरंत परेशान भाव दिखाया, 500 सोने के सिक्के वास्तव में बहुत कम कीमत थी। हालांकि उन्होंने तुरंत मना नहीं किया, क्योंकि इसके विपरीत वह वास्तव में उस दांत को जल्दी से बेचना चाहते थे जिसमें रॉकी की रुचि थी। वास्तव में इस दांत के संबंध में मालिक ने एक भी झूठ नहीं बोला था, दांत वास्तव में कई वर्षों से उनके गोदाम में रखा हुआ था, किसी कारण से किसी कोने में किसी का ध्यान नहीं गया, किसी की पहचान नहीं हुई, और ऐसी परिस्थितियों में मालिक भी इसे जल्दी से बेचना चाहता था ताकि इसके साथ फंसने से बचा जा सके। इसके अलावा चूंकि एलिन शुरू से आखिर तक ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे पैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, मालिक रॉकी और बाकियों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अज्ञात डायमंड टूथ रॉकी को बेच दिया। ठीक इसी तरह थोड़ी सी चालाकी से एलिन ने दानव दांत की कीमत आधे से भी अधिक कम कर दी और सफलतापूर्वक अज्ञात दांत खरीद लिया। दरअसल रॉकी और बाकी लोग अच्छी तरह जानते थे कि एलिन ने पहले जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ दुकानदार को डराने के लिए था। ये सब अपनी छवि को मजबूत बनाने के लिए बड़ा झंडा लहराने के बारे में था, और तार्किक रूप से कहें तो दुकानदार को ऐसी चालों से डरना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि रॉकी वास्तव में एक नगर स्वामी था, इसलिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। इसके अलावा एलिन का झांसा इतना बड़ा था कि उसमें कॉन्टिनेंटल कॉमर्स चैम्बर और आदमखोर राक्षसों के दांत जैसी चीजें शामिल थीं, जिससे दुकानदार को शक करने की भी हिम्मत नहीं हुई और वह ठगा गया। एलिन, कैसा रहा, क्या तुम्हें कोई खरीदार मिला? दुकान से बाहर निकलने और दानव के दांत को सुरक्षित रूप से रखने के बाद रॉकी ने एलिन की ओर देखा, ये जानने के लिए उत्सुक था कि ग्रॉक स्टोन के संबंध में उसकी बातचीत कैसी रही। महाराज, चिंता न करें, इन बातों में समय लगता है। मैंने पहले ही कुछ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मोटे तौर पर बात कर ली है और कुछ और पूछना चाहता हूँ, इसलिए हो सकता है कि हम आज चर्चा पूरी न कर पाएं। एलिन का विचार स्पष्ट रूप से सही था, इसलिए रॉकी ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो अलग हो जाते हैं। तुम यहाँ उपयुक्त खरीदारों की तलाश करती रहो, कोई जल्दी नहीं है, और मैं चमड़े और तकनीशियनों की जाँच कर लूंगा। ये चलने लगा। सिर हिलाते हुए एलिन ने रॉकी से अलग होकर ग्रॉक स्टोन मामले पर चर्चा करने के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तलाश जारी रखी। जैसा कि रॉकी ने कहा था, वहलिया और मोटे के साथ हंटिंग एक्सचेंज से तुरंत निकल गया। इटर्नल सिटी की उनकी यात्रा केवल ग्रॉक स्टोन बेचने के लिए नहीं थी, रॉकी को कई मामलों को निपटाना था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण वे थे जिनका उन्होंने अभी उल्लेख किया था, चमड़ा खरीदना और तकनीशियनों को काम पर रखना। इससे पहले उन्होंने थंडरहॉक सिटी की अर्थव्यवस्था में सुधार की तैयारी की थी, जिसके लिए उन्होंने और एलिन ने कई दिनों तक चर्चा की थी और सफलतापूर्वक एक विस्तृत योजना तैयार की थी, जिसे थंडरहॉक सिटी की दो आर्थिक सुधार योजना या संक्षेप में दोहरी सुधार योजना कहा गया था। तथाकथित दोहरे सुधार में आर्थिक मॉडल और आर्थिक फोकस दोनों का उल्लेख था। थंडरहॉक सिटी को धीरे धीरे एक नियोजित अर्थव्यवस्था से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना और आर्थिक फोकस को कम मार्जिन वाले वस्त्रों से उच्च लागत वाले लेकिन उसी तरह अत्यधिक लाभदायक चमड़ा विनिर्माण में स्थानांतरित करना। चमड़ा निर्माण को चुनने का निर्णय रॉकी और एलिन के बीच सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया आपसी निर्णय था। चूंकि चमड़ा उत्पादन और वस्त्र उद्योग में कुछ समानताएं थीं, इसलिए थंडरहॉक शहर के निवासियों के लिए इसे अपनाना आसान था। इसके अलावा चमड़ा उद्योग की बाजार में अच्छी संभावनाएं थीं, जो सैन्य से लेकर दैनिक उपयोग तक हर चीज को कवर करता था, जो थंडरहॉक जैसे कम आबादी वाले छोटे शहर के लिए उपयुक्त था, जहां एक ऐसे उद्योग की जरूरत थी जो कम उत्पादन के बावजूद बिक्री और मुनाफे की चिंता न करे। सफलता सुनिश्चित करने के लिए रॉकी अपने इटर्नल सिटी दौरे के अवसर का उपयोग करते हुए थंडरहॉक सिटी में सिखाने के लिए कुछ तकनीशियनों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा था, ताकि स्थानीय निवासी चमड़ा निर्माण तकनीक सीख सकें और फिर धीरे धीरे शहर में इस उद्योग का विकास कर सकें। इसलिए एलिन से अलग होने के बाद वह मोटे के नेतृत्व में तकनीशियन गिल्ड की ओर बढ़ गया और कुछ तकनीशियनों को काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वे तकनीशियन गिल्ड तक नहीं पहुंच पाए थे कि एक अन्य गिल्ड ने रॉकी का ध्यान आकर्षित कर लिया। मोटे, ये भाड़े का गिल्ड क्या है? रॉकी ने अपनी जगह पर रुककर पास ही स्थित एक इमारत की ओर इशारा किया और पूछा। महाराज, यही वह जगह है जहां विभिन्न स्काई सिटीज मिशन वितरित करने के लिए एकत्रित होते हैं, मोटे ने रॉकी द्वारा बताई गई इमारत की ओर देखा और उत्तर दिया। क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है? चलो देखते हैं। मोटे के स्पष्टीकरण ने तुरंत रॉकी की रुचि जगा दी और बिना एक शब्द कहे वह सीधे भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, लिलिया ने उसे रोक दिया। रॉकी, अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? रॉकी को रोकते हुए लिलिया ने उसकी ओर अप्रसन्नता से देखा, मानो वह उसकी असलियत समझ सकती हो। अरे, मैं तो बस देखने जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। लिलिया को देखकर रॉकी ने हंसते हुए ये कहा, लेकिन उसके पैर नहीं रुके, वह सीधे भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ गया। रॉकी को भाड़े के सैनिकों के संघ के बारे में जिज्ञासा थी, इसलिए उसने लिलिया के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और सीधे संघ में चला गया। पिछले एक्सचेंज के विपरीत जहां वह गए थे, भाड़े के सैनिकों का संघ एक दो मंजिला इमारत में स्थित था, फिर भी इसका आकार कहीं अधिक भव्य था, जिससे तुरंत ही भव्यता का आभास होता था। इसके अलावा वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता था। जैसे ही रॉकी ने भाड़े के सैनिकों के समूह में प्रवेश किया, उसे वहां असाधारण रूप से जीवंतता महसूस हुई। यहां लोगों की संख्या एक्सचेंज में मौजूद लोगों से कहीं ज्यादा थी और उनके रूप रंग में भी काफी विविधता थी। मिसाल के तौर पर जैसे ही रॉकी दरवाजे से अंदर आया, उसकी नजर एक ऐसे बौने पर पड़ी जिसकी खूबसूरती औरतों से भी ज्यादा थी, और फिर कुछ ही कदम चलने पर उसकी नजर एक बौने पर पड़ी जिसकी लंबाई सिर्फ उसकी कमर तक ही थी। वाह, यहां एकत्रित विभिन्न जातियों की विविधता बहुत अधिक है। पहली बार इतनी सारी विभिन्न जातियों को देखकर रॉकी स्पष्ट रूप से इससे अनभिज्ञ था, और जब उसने भीड़ को पार करते हुए मुख्य हॉल में देखा तो उसने तुरंत एक्सचेंज में रखे गए मैना बोर्ड के समान एक मैना बोर्ड देखा। भाड़े के सैनिकों के संघ के हॉल में एक नोटिस बोर्ड भी था, जो एक्सचेंज में लगे बोर्ड से भी बड़ा था, जिस पर लगातार विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी रहती थी। गुना गुना स्काई सिटी खदान की रक्षा में मदद करने के लिए एक भाड़े के समूह की उच्च कीमत वाली भर्ती की पेशकश करता है, जिसके लिए 500 से अधिक सदस्यों के समूह की आवश्यकता होती है, जिसकी औसत ताकत चौथे स्तर से कम नहीं होती है, और प्रति माह 30,000 सोने के सिक्कों का कमीशन दिया जाता है। गुना गुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारी जहाजों की सुरक्षा के लिए शून्य जादू योद्धाओं की उच्च कीमत पर भर्ती की पेशकश की है, जिसके लिए 30 व्यक्तियों की आवश्यकता है तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। गुना गुना स्काई सिटी एक शक्तिशाली भाड़े के समूह के लिए राक्षसों को खत्म करने में सहयोग करने के लिए एक उच्च मूल्य वाली नौकरी प्रदान करता है, जिसके लिए 300 से अधिक लोगों के समूह की आवश्यकता होती है, जो शून्य जादू दस्ते के साथ समन्वय करता है। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। नोटिस बोर्ड के नीचे रॉकी ने रोलिंग जानकारी को ध्यान से देखा और पाया कि सामग्री मोटे द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाती थी। सभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और स्काई सिटी द्वारा जारी किए गए कमीशन थे, जो मुख्य रूप से लड़ाकू मिशनों के लिए थे। सच कहें तो उसने पहली बार ऐसी गतिविधियों के बारे में सुना था, इसलिए वह मोटे से यह पूछे बिना नहीं रह सका। स्काई सिटी युद्ध के लिए भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करने के लिए आदेश क्यों प्रकाशित करता है? ठीक है, मोटे ने रॉकी की ओर देखा, अपना मुंह खोला और एक लंबे विराम के बाद अंततः कहा, महाराज, हर स्काई सिटी में मजबूत क्षमताएं नहीं होती हैं, इसलिए कमजोर लोग, खासकर जब वे युद्ध से संबंधित परेशानियों का सामना करते हैं, तो आमतौर पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए दूसरों को काम पर रखने के लिए यहाँ मिशन पोस्ट करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली स्काई सिटीज भी कभी कभी यहाँ कार्य पोस्ट करते हैं, हालांकि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर के स्वामी नहीं चाहते कि उनके अपने लोग मरें। ओह, मैं समझा। मोटे के स्पष्टीकरण से रॉकी को तुरंत समझ आ गया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, यहाँ कार्य स्वीकार करने के लिए क्या हमें एक भाड़े का समूह बनाना होगा? रॉकी, तुम क्या योजना बना रहे हो? इससे पहले कि मोटे रॉकी के प्रश्न का उत्तर दे पाता, लिलिया, जो उनके बगल में थी, गुस्से में बोली, क्योंकि वह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि रॉकी क्या सोच रहा है। हे, मैं तो बस पूछ रहा था, स्थिति जानने से कोई खतरा तो नहीं है, है ना? लिलिया की ओर एक धूर्त मुस्कान के साथ रॉकी मोटे की ओर मुड़ा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। दरअसल यह जरूरी नहीं है, किसी कार्य को पोस्ट करने के लिए बस साइन अप करना होता है, और कार्य स्वीकार करने के लिए भी यही नियम है। जब तक आप नियोक्ता की जरूरतों को पूरा करते हैं, गिल्ड बाकी सब कुछ संभाल लेता है। यह जरूरी नहीं कि किसी भाड़े के सैनिक समूह के जरिए ही हो। तो यहाँ आमतौर पर किस प्रकार के कार्य उपलब्ध हैं? आमतौर पर वे सुरक्षा से संबंधित होते हैं, लेकिन उनमें लगभग हमेशा युद्ध शामिल होता है, और 10 में से 9 बार यह राक्षसों से मुकाबला होता है। यही कारण है कि यहाँ व्यक्तियों के लिए बहुत कम कार्य हैं। मोटे के स्पष्टीकरण से रॉकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि उसके लिए भाड़े के सैनिकों का संघ स्पष्ट रूप से भाग्य बनाने के लिए एक आदर्श स्थान था। थंडरहॉक सिटी में सुधार होने वाला था, जिसके सुचारू विकास के लिए निस्संदेह पर्याप्त निवेश की आवश्यकता थी, इसलिए अब पहले से कहीं अधिक रॉकी को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। लेकिन थंडरहॉक सिटी से प्राप्त अकेले वित्तीय संसाधन इन सुधार लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए रॉकी को अन्य तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। मूलतः उनकी योजना ये थी कि उनके जाने के बाद वे कुछ राक्षसों का शिकार करेंगे और उनके अंगों को बेचकर धन अर्जित करेंगे, जिससे सुधार का समर्थन किया जा सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भाड़े के सैनिकों के संघ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्य स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प थे, जिनमें कमीशन आसानी से दसियों या कई दसियों हजार स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच जाता था। थंडरहॉक सिटी के सिटी लॉर्ड होने के नाते रॉकी के पास न केवल शून्य जादुई कवच का एक सेट था, बल्कि उसके अधीन 200 रक्षक और 10 सैन्य तैरते जहाज भी थे। स्काई सिटी में ऐसा सेटअप ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन भाड़े के सैनिकों की दुनिया में ये निश्चित रूप से एक भाड़े के सैनिक समूह के पैमाने तक पहुंच गया और कई कार्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए ध्यानपूर्वक सोचने के बाद रॉकी को लगा कि यह विचार बहुत व्यावहारिक है, और फिर उसने पूछा, मोटे, क्या भाड़े के सैनिकों के समूह के पास कोई संचार सुविधा है जिससे मैं किसी भी समय कहीं भी कार्यों की जाँच कर सकूँ? बेशक है, सिर हिलाते हुए मोटे ने कहा, भाड़े के सैनिकों के समूह के पास एक कार्य रिसीवर है जो संचरण के लिए मैना का उपयोग करता है। ये किसी भी समय और कहीं भी कार्य की जानकारी की जांच कर सकता है और कार्यों को सौंपने के लिए समूह से संपर्क भी कर सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। जब मोटे रॉकी को विस्तार से समझा रहा था, तो बगल में बैठी लिलिया नाखुश हो गई। उसने मोटे को बुरी तरह घूरा, जिससे बड़ा जानवर डरकर तुरंत चुप हो गया, और फिर लिलिया ने भी उसी क्रूरता के साथ रॉकी को घूरा। लिलिया रॉकी को बहुत अच्छी तरह जानती थी, वह शुरू से ही जानती थी कि वह क्या क्या योजनाएं बना रहा है। रॉकी के विपरीत उसने बहुत पहले ही भाड़े के सैनिकों के संघ के बारे में सुन लिया था, और वह अच्छी तरह जानती थी कि यद्यपि यहां दिए गए कार्य उच्च कमीशन वाले प्रतीत होते थे, वे अत्यंत खतरनाक भी थे और कुछ मामलों में राक्षसों का शिकार करने से भी अधिक खतरनाक। इसलिए स्वाभाविक रूप से लिलिया नहीं चाहती थी कि रॉकी अब यहां और रुके, क्योंकि एक बार रॉकी को यहां की स्थिति समझ में आ गई तो कौन जाने उसके दिमाग से कौन से बेतुके और खतरनाक विचार निकलेंगे। हे, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूं। हालांकि लिलिया की बाधा का सामना करते हुए रॉकी हमेशा की तरह बिगड़ल स्वभाव का था और मोटे की ओर देखते हुए बोला, मोटे, क्या तुम्हें लगता है कि थंडरहॉक शहर के गार्ड कोर शहर में तैरते 10 जहाजों के साथ यहाँ के कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं? यह रॉकी के सवाल ने मोटे को थोड़ा उलझन में डाल दिया। लिलिया के बार बार टोकने के बावजूद मोटे को उम्मीद नहीं थी कि रॉकी इन कामों को अंजाम देगा, क्योंकि वह एक शहर का सरदार था। क्या वाकई ऐसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल होना जरूरी था? इसके अलावा थंडरहॉक सिटी की ताकत को देखते हुए मोटे के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दिए। कोई चिंता नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मोटे के चेहरे पर परेशानी भरी नजर देखकर रॉकी ने हाथ हिलाकर उसे खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी दृढ़ता को देखकर स्पष्टवादी मोटे ने एक क्षण सोचा और अंत में कहा, सर, थंडरहॉक सिटी के 10 तैरते जहाज निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत हैं, जिनकी तुलना अधिकांश भाड़े के समूहों से नहीं की जा सकती है, और सिटी लॉर्ड और मिस लिलिया की ताकत स्वाभाविक रूप से बिना कहे ही समझ में आ जाती है। हालांकि शहर में गार्ड कोर, वे वास्तव में युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए मोटे ने आखिरकार सच बोल दिया। उसकी नजर में थंडरहॉक सिटी की गार्ड कोर केवल दिखावा थी, जिसमें युद्ध क्षमता का पूर्ण अभाव था। हम ये लगभग वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उसकी बातें सुनकर रॉकी को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, मोटे, यदि आप गार्ड कोर को प्रशिक्षित करें तो आपके विचार से गार्ड कोर को वास्तविक युद्ध के लिए सक्षम बनने में कितना समय लगेगा? मोटे की ओर देखने के बाद रॉकी ने पूछा, यदि आप थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर को प्रशिक्षित करें तो आपको क्या लगता है कि गार्ड कोर को वास्तविक युद्ध के लिए सक्षम होने में कितना समय लगेगा? हे प्रभु, मैं अचानक पूछे गए प्रश्न से मोटे अचंभित हो गया और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे तथा वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। हालांकि रॉकी ने उस पर दबाव नहीं डाला और जल्दी ही इधर उधर देखने के बाद टास्क रिसीवर खरीदने के लिए हॉल में सर्विस काउंटर पर चला गया। भाड़े के सैनिकों के गिल्ड का टास्क रिसीवर वाकई एक बहुत ही सुविधाजनक गैजेट था। इससे न सिर्फ कभी भी और कहीं भी टास्क की जानकारी देखी जा सकती थी, बल्कि टास्क सौंपने के लिए गिल्ड के साथ लगातार संपर्क भी संभव था। बस एक ही दिक्कत थी कि यह सस्ता नहीं था। हथेली के आकार के रिसीवर की कीमत 500 सोने के सिक्के थी, जिससे रॉकी सचमुच से हर उठता था। लेकिन दर्द के बावजूद रॉकी ने फिर भी एक सिक्का खरीद लिया, यह विश्वास करते हुए कि 500 सोने के सिक्कों का निवेश निश्चित रूप से उसे कई गुना लाभ दिलाएगा। इसके बाद वह लिलिया और मोटे के साथ चले गए और अंततः टेक्नीशियन गिल्ड में पहुंच गए। टेक्नीशियन गिल्ड तक की यात्रा के बारे में ज्यादा कुछ कहना मुश्किल था। वहां पहुंचकर रॉकी को आसानी से 2 टेक्नीशियन मिल गए जो उसके साथ थंडरहॉक सिटी जाने को तैयार थे। कमीशन पर बातचीत और गिल्ड के नोटरीकरण के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मामला सुलझ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। टेक्नीशियन गिल्ड से निकलकर वह जल्दी से इटर्नल सिटी के सबसे बड़े व्यापारिक बाजार में गया और वहां से 500 चमड़े के टुकड़े मंगवाए। ये चमड़े मुख्य रूप से निवासियों के लिए कौशल सीखने हेतु थे, मांग बहुत अधिक नहीं थी और लागत भी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए रॉकी ने विक्रेता के साथ सीधे बातचीत करके सौदा कर लिया और एलिन को परेशान नहीं किया। ये सब करने के बाद ही रॉकी ने अंततः अपने दिन का कार्यक्रम समाप्त किया और होटल लौट आया। हालांकि जब वह होटल वापस लौटा तो एलिन पहले ही वापस आ चुकी थी और कुछ अच्छी खबर लेकर आई थी। ग्रॉक स्टोन का व्यापार पूरा हो गया था। ये तो हो गया इतनी जल्दी? रॉकी ने आश्चर्य से एलिन की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि ऐसी चीजों को अंतिम रूप देने में कई दिन लगेंगे। इस बार हम काफी भाग्यशाली थे। रॉकी के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव देखकर एलिन ने आगे बताया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन पता चला कि एक नव स्थापित छोटे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ग्रॉक स्टोन की एक खेप की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए ये सौदा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या कीमत पेश की? रॉकी को इस बात से अधिक चिंता थी कि ग्रॉक स्टोन को किस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खरीदा था, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि इसे कितने पैसे में बेचा गया, क्योंकि यह राशि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रति किलोग्राम 19 सोने के सिक्के, 900 किलोग्राम ग्रॉक स्टोन, कुल लेन देन मूल्य 17,000 सोने के सिक्के हैं, और उन्होंने ब्लू रेड डायमंड स्किन का एक टुकड़ा उपहार में देने का भी वादा किया है। हम कल हैंडओवर पूरा कर सकते हैं। रॉकी की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ एलिन ने परिणाम की घोषणा करते हुए अपना गर्व नहीं छिपाया। और जब रॉकी और अन्य लोगों ने ये परिणाम सुना तो वे सभी दंग रह गए, क्योंकि यह परिणाम उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। यहाँ आने से पहले रॉकी और एलिन ने ग्रॉक स्टोन के व्यापार का अनुमान लगा लिया था। उस समय एलिन के पास जो बाजार की जानकारी थी उसके आधार पर उनका मानना था कि ग्रॉक स्टोन कम से कम 10,000 स्वर्ण सिक्कों में बिक सकता है। अगर वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो थंडरहॉक शहर में अनाज बेचने से मिलने वाला पैसा काफी होगा और शायद कुछ अतिरिक्त भी हो। इसलिए जब रॉकी को पता चला कि एलिन ने वास्तव में ग्रॉक स्टोन को 17,000 स्वर्ण सिक्कों में बेच दिया है और सौदे में उसे दानव त्वचा का एक टुकड़ा भी मिला है, तो वह इतना खुश हुआ कि वह खुशी से उछल पड़ा। ये कीमत उनकी पिछली उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ये निश्चित रूप से सभी के लिए जश्न मनाने का अवसर था। शायद आकाश में मौजूद दूसरे शहरों के लिए ये अतिरिक्त 7,000 स्वर्ण सिक्के ज्यादा न लगे, लेकिन थंडरहॉक शहर के लिए ये राशि न सिर्फ मामूली नहीं थी बल्कि बेहद महत्वपूर्ण भी थी। इस पैसे से रॉकी इतने सारे काम कर सकता था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एलिन की तारीफ कैसे करे। इसलिए उसने बस उसे सिटी लॉर्ड की तरफ से गले लगा लिया, जो उसके लिए आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। नगर स्वामी के आलिंगन ने एलिन को अचंभित कर दिया। जब रॉकी ने उसे गले लगाया तो वह बर्फ की तरह जम गई, और रॉकी के जाने के बाद भी वह पिघली नहीं थी। बहुत बढ़िया, इस पैसे से मैं गार्ड कोर के लिए सभी उपकरण बदल सकता हूँ। रॉकी ने एलिन की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और वह उत्साह से कमरे में इधर उधर घूमने लगा तथा धीरे से कुछ बुदबुदाने लगा। तब तक एलिन वास्तविकता में वापस नहीं आ सकी थी और बोलने से पहले कुछ देर तक रॉकी को देखती रही। महाराज, इस अतिरिक्त धन को बचाना और मितव्ययिता से खर्च करना ही सर्वोत्तम है। ये देखकर कि रॉकी ने पहले ही पैसे का उपयोग करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, एलिन को उसे याद दिलाने की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि ग्रॉक स्टोन व्यापार ने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था, जिससे उन्हें काफी अप्रत्याशित लाभ हुआ था, लेकिन एलिन को रॉकी को याद दिलाना पड़ा कि थंडरहॉक सिटी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पैसा लापरवाही से खर्च न करना ही समझदारी है, क्योंकि उनके पास बर्बाद करने के लिए पूंजी नहीं थी। ऐसी चिंताएं बेबुनियाद नहीं थी। रॉकी भी यह बात जानता था, लेकिन उसकी राय में गोदाम में रखे सोने के सिक्कों से छोटे सिक्के नहीं बनेंगे। इसके विपरीत कभी कभी सारा पैसा खर्च करने से और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गार्ड कोर को ही लीजिए, जिसका जिक्र उसने अभी किया। मर्सिनरी गिल्ड की एक यात्रा के बाद रॉकी एक मर्सिनरी बनने के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिटी लॉर्ड की अपनी भूमिका छोड़कर मर्सिनरी बनने की योजना बना रहा था, बल्कि वह मर्सिनरी गिल्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना चाहता था। रॉकी के लिए भाड़े के सैनिकों के संघ द्वारा दिए गए कार्य निस्संदेह पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका थे, और वह भी अच्छी खासी रकम। इन कार्यों में आमतौर पर हजारों सोने के सिक्कों का कमीशन मिलता था, जो कोई छोटी रकम नहीं थी और थंडरहॉक शहर के लिए बहुत मददगार साबित होती। हालांकि भाड़े के सैनिकों के समूह के काम अकेले नहीं किए जा सकते थे, इसके लिए एक ऐसे दस्ते की जरूरत थी जो इन जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए जब उसे पता चला कि ग्रॉक स्टोन से होने वाली आय उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, तो उसने तुरंत गार्ड कोर के लिए उपकरणों का एक जत्था खरीदने के बारे में सोचा। नए उपकरणों और उचित प्रशिक्षण के साथ थंडरहॉक सिटी की गार्ड कोर माचिस की तीलियों से तोपों में तब्दील हो जाएगी, जो वास्तव में उपयोगी होने के लिए तैयार है। ये बहुत बढ़िया है, सचमुच बहुत बढ़िया। मुझे इस पैसे का उपयोग कैसे करना है, इस बारे में सोचना होगा। उत्साहित रॉकी कमरे में इधर उधर टहल रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था, तथा अपने मन में सोच रहा था कि एलिन द्वारा कमाए गए धन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। वह बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा था। लिलिया, जिसने उसकी हरकतें कई बार देखी थी, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन एलिन और मोटे, जिन्होंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका नगर स्वामी ऐसा व्यवहार कर सकता है। और इस तरह इटर्नल सिटी में सबका पहला दिन बीत गया। इस दिन रॉकी और बाकी लोगों ने कई काम पूरे किए, लेकिन साथ ही उनके लिए और भी कई काम बाकी थे, चाहे वो इटर्नल सिटी हो या थंडरहॉक सिटी। इसलिए दूसरे दिन रॉकी और एलिन अपने अपने काम पर लग गए। एलिन अनाज के व्यापार सौदे के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत करने चली गई, और योजना बनाने में जुटी एक रोमांचक रात के बाद रॉकी ने लिलिया और मोटे को अपने साथ ले जाकर नए उपकरण खरीदने का फैसला किया। आकाश अब शांत नहीं था, हर पल युद्ध छिड़ा रहता था, या तो जमीन पर राक्षसों के विरुद्ध या आकाश में नगरों के बीच भीषण युद्धों में। बहरहाल युद्ध कभी रुकता नहीं था। ऐसे हालात में युद्ध से जुड़ा व्यापार स्वाभाविक रूप से फलता फूलता था, और एक व्यापारिक नगरी होने के नाते इटर्नल सिटी में युद्ध से जुड़े लेन देन की कभी कमी नहीं होती थी। यहां तक कि यह पूरे आकाश में सबसे बड़ा हथियार बाजार भी था। इसलिए जब मोटे रॉकी को इटर्नल सिटी के हथियार बाजार में लाया, तो रॉकी उसके सामने रखे हथियारों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखकर तुरंत मोहित हो गया। इटर्नल सिटी में हथियारों का बाजार सड़क किनारे की दुकानों से बना कोई छोटा मेला नहीं था। बाजार का आकार बहुत बड़ा था, एक दर्जन से अधिक सड़कों तक फैला हुआ एक विशाल बाजार, जिसमें कई सौ दुकानें थीं, साधारण सैनिकों के हथियारों और कवच से लेकर तैरते हुए युद्धपोतों तक, सस्ते छेनी से लेकर शून्य जादुई कवच के नवीनतम मॉडल तक, सब कुछ उपलब्ध था। यहां पहुंचने पर रॉकी एक बड़े बच्चे में बदल गया था, जो अपने सामने रखे अनगिनत खिलौनों को देखकर अत्यधिक उत्साहित था और लगभग तुरंत ही उत्सुकता से एक दुकान में घुस गया। नमस्ते, स्वागत है। जब वह लिलिया और मोटे के साथ दुकान में गया, तो एक युवा और सुंदर महिला दुकान सहायक ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। आप क्या खरीदना चाहेंगे? नमस्ते। रॉकी ने दुकान के सहायक की तरफ सिर हिलाया और दुकान में इधर उधर देखा, तो पाया कि यह एक ठीक ठाक आकार की हथियार की दुकान थी, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के हथियार और कवच टंगे हुए थे, और काउंटरों पर भी यही हाल था। इसके अलावा सारे हथियार बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहे थे। इसके बाद रॉकी ने दुकान में सामान देखना शुरू कर दिया और दुकान का सहायक उसके पीछे पीछे चलने लगा, तथा जब भी रॉकी रुकता या किसी विशेष हथियार में रुचि दिखाता तो वह उसे सही जानकारी देता। सर, ये बैकस्टेप तलवार उत्तम इस्पात से बनी है जो किंगडिंग माउंटेन सिटी से आई है। असाधारण रूप से तेज है और आसानी से सामान्य कवच को भेद सकती है। यह एक मानक सैन्य ढाल है जिसका रक्षात्मक क्षेत्र बड़ा है और वजन मध्यम है तथा उपयोग में अत्यंत चुस्त है। ये बहुत मजबूत रक्षात्मक शक्ति वाला भारी कवच है जो नीले चूहे दानव के सीधे हमले को भी झेलने में सक्षम है। जब रॉकी रुका और उसकी नज़र कवच के पूरे सेट पर पड़ी तो उसके बगल में बैठे दुकान सहायक ने जल्दी से उसका परिचय कराया। दुकान सहायक ने सब कुछ अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, लेकिन रॉकी को इन चीज़ों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस थोड़ी सी उत्सुकता थी क्योंकि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वह जल्दी से दुकान सहायक की ओर देखने के लिए मुड़ा, क्या तुम्हारे पास यहाँ मन हथियार हैं? रॉकी इस बार हथियार बाजार में उपकरण खरीदने आया था, और सिर्फ एक या दो उपकरण नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में उपकरण, क्योंकि उसका लक्ष्य थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर को हथियार प्रदान करना था। हालांकि वह जो खरीदना चाहता था वह साधारण उपकरण नहीं था बल्कि मन उपकरण था। हाँ, हम करते हैं। उसका सवाल सुनते ही दुकान की सहायिका के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। ये तो जगह जाहिर था कि मन हथियार आम हथियारों से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं और मुनाफा भी स्वाभाविक रूप से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब दुकान की सहायिका ने सुना कि रॉकी मन हथियारों में दिलचस्पी रखता है तो वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। वह जल्दी से रॉकी को काउंटरों की एक पंक्ति के पास ले गई और फिर उनकी ओर इशारा करते हुए बोली, सर, ये वे मन हथियार हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। काउंटर के सामने खड़े होकर नीचे देखते हुए रॉकी ने देखा कि इस पंक्ति में सचमुच सभी मन हथियार थे। जादुई पत्थरों से जड़े तलवारें और खंजर और जादुई पत्थरों से जड़े कवच और ढालें भी थीं। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी विविधता पूरी थी। मुझे उस ढाल पर एक नज़र डालने दो। कुछ देर तक देखने के बाद उसने एक ढाल की ओर इशारा किया और दुकान के सहायक ने तुरंत उस ढाल को काउंटर से उठाकर रॉकी को दे दिया। यह एक अंडाकार स्टील की ढाल थी जिसकी सतह पर हल्का सा मोड़ था, बिल्कुल शीशे जैसी चिकनी। इस पर तीन सितारों वाला एक पैटर्न भी था और जब रॉकी ने इसे पलटकर अंदर देखा तो उसने देखा कि इसमें तीन सूक्ष्म जादुई पत्थर जड़े हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक जादुई ऊर्जा ढाल थी जिसकी गुणवत्ता काफी अच्छी थी, सामग्री और शिल्प कौशल दोनों के मामले में, और विशेष रूप से क्योंकि ढाल में तीन सूक्ष्म जादुई पत्थर जड़े हुए थे। ढाल की रक्षात्मक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह चौथे स्तर के योद्धा के सीधे हमले का सामना करने में सक्षम थी। सर, ये जादुई ऊर्जा ढाल बढ़िया स्टील और थोड़ी मात्रा में मिथ्रिल से बनी है। ढाल की सतह का चाप विशेष रूप से हमलों से बचाव करते समय प्रभाव बल को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एक तीन सितारा जादुई ऊर्जा उपकरण होने के नाते इसकी जादुई ऊर्जा का मूल्य 150 अंकों से अधिक है। शक्तिशाली मन ये सुनिश्चित करता है कि यह पांचवें स्तर के योद्धा के भारी प्रहारों का आसानी से सामना कर सकता है। जैसे ही रॉकी ने अपने हाथों में जादुई ऊर्जा ढाल की सावधानी पूर्वक जांच की, महिला सेल्स क्लर्क ने उसे ढाल के लाभों से अच्छी तरह परिचित कराया। जिसे वह तीन सितारा जादुई ऊर्जा उपकरण कहती थी, उसका वास्तव में मतलब था कि ढाल में तीन जादुई पत्थर जड़े हुए थे जिनमें से एक जादुई पत्थर एक सितारे का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि उसका वर्णन स्पष्ट रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण था। हालांकि रॉकी को ढाल की सामग्री और शिल्प कौशल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन माना रूनों पर उसकी महारत का मतलब था कि वह जादुई ऊर्जा के मूल्यों को ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा गहराई से समझता था। उनके विचार में ढाल की कारीगरी और सामग्री वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन जादुई ऊर्जा का मूल्य निश्चित रूप से 150 अंक तक नहीं पहुंचता था। एक सूक्ष्म जादुई पत्थर केवल 40 अंक का मान प्रदान कर सकता था और तीन सूक्ष्म जादुई पत्थरों से 120 अंक बनते थे। हालांकि प्रसंस्करण के बाद कुछ विशेष तकनीकों से यह मान बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उनके सामने वाली ढाल में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। इस ढाल की जादुई ऊर्जा का मान न केवल 150 अंक तक पहुंच पाया बल्कि 120 अंक तक भी नहीं पहुंच पाया। अतिरिक्त तकनीकी सुधार के बिना तीन सूक्ष्म जादुई पत्थरों के लिए अपनी जादुई ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त करना असंभव था। रॉकी के अनुमान के अनुसार इस ढाल की जादुई ऊर्जा का मान अधिकतम 100 अंकों के आसपास था। चौथे स्तर के योद्धा के हमलों से बचाव के लिए ये ठीक होना चाहिए था, लेकिन यह निश्चित रूप से पांचवें स्तर के योद्धा के हमले का सामना नहीं कर सकता था, उनके भारी प्रहारों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन उसे महिला सेल्स क्लर्क से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने आगे पूछा, ये शील्ड कितने की है? महाशय, 800 स्वर्ण मुद्राएं, 800 सोने के सिक्के। रॉकी के लिए कीमत निस्संदेह बहुत महंगी थी, इसलिए बाद में उन्होंने पूछा, क्या आपके पास कुछ कम महंगा है? सस्ता, रॉकी की बात सुनकर सेल्स क्लर्क ने उसे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसने अपना सिर नीचे किया और काउंटर में तलाशी ली। उसे जल्द ही एक और ढाल मिल गई। सर, ये ढाल उच्च श्रेणी के काले लोहे से बनी है। हालांकि यह केवल एक सितारा ढाल है, फिर भी इसका जादुई ऊर्जा मूल्य 50 अंक है और इसकी कीमत बहुत कम है, केवल 300 स्वर्ण सिक्के। बोलते समय सेल्स क्लर्क ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ढाल रॉकी को दे दी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब रॉकी ने ढाल की ओर देखा तक नहीं और फिर पूछा, अभी भी बहुत महंगी है, क्या आपके पास इससे भी सस्ती कोई चीज है? और भी सस्ता, सेल्स क्लर्क, जो ढाल को हवा में उठाए हुए था, दंग रह गया। एक पल बाद उसने कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, सर, अगर आप कुछ सस्ता ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ साधारण ढालें ही हैं। नहीं, मुझे जादुई ऊर्जा उपकरण चाहिए, लेकिन इसमें सूक्ष्म जादुई पत्थरों का होना आवश्यक नहीं है, यहां तक कि छोटे पत्थरों वाले उपकरण भी काम करेंगे। मुझे खेद है, हम इस तरह के उपकरण नहीं बेचते हैं। रॉकी के ये कहते ही पहले से दोस्ताना व्यवहार करने वाली सेल्स क्लर्क के चेहरे के भाव बदल गए। उसने रॉकी की तरफ भौहें चढ़ाई और फिर चिढ़कर बोली, सर, यह एक असली हथियार की दुकान है। आप जिस तरह के हथियार की बात कर रहे हैं, हम वहां नहीं बेचते। इतना कहने के बाद सेल्स क्लर्क ने रॉकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस पर आंखें घुमाई और काउंटर के पीछे अपनी जगह पर वापस आ गई। क्या हो रहा था? सेल्स क्लर्क के व्यवहार में अचानक आए बदलाव ने रॉकी को पूरी तरह से चौंका दिया और वह ये सोचकर हैरान रह गया कि आखिर हुआ क्या था। क्या उसने कुछ गलत कह दिया था? महिला क्लर्क की निराश निगाहों के सामने रॉकी असहाय होकर दुकान से बाहर चला गया। बाहर निकलने के बाद भी वह स्थिति को लेकर उलझन में था। क्या उसने अभी कुछ गलत कहा था? असमंजस में अपना सिर हिलाते हुए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे दूसरी दुकान की ओर चल दिया। दूसरी दुकान में प्रवेश करने पर रॉकी ने पहले की तरह ही जादुई उपकरणों की कीमतों के बारे में पूछताछ की और एक बार फिर पूछा कि क्या कोई सबसे सस्ता जादुई उपकरण उपलब्ध है। जितना सस्ता होगा उतना ही अच्छा होगा, भले ही वह एक छोटे जादुई पत्थर के बजाय एक सूक्ष्म जादुई पत्थर से जड़ा हुआ न हो। जैसे ही उसने यह अनुरोध किया, क्लर्क ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हालांकि वह पिछली महिला क्लर्क जितना तिरस्कारपूर्ण नहीं था, फिर भी उसने रॉकी को जल्द ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। रॉकी को यह नहीं पता था कि हथियार की दुकानों में काम करने वाले लोग विशेषज्ञ होते हैं और वे सभी एक बुनियादी बात जानते थे कि मन उपकरण के लिए न्यूनतम मानक एक छोटा जादुई पत्थर जड़ा होना था। केवल कम से कम एक छोटे जादुई पत्थर वाले उपकरण को ही मन उपकरण कहा जा सकता था और इस मानक से नीचे की किसी भी चीज को मन उपकरण नहीं माना जा सकता था। रॉकी ने जो अनुरोध किया था वह स्पष्ट रूप से इस न्यूनतम मानक से नीचे था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खाली हाथ वापस आ गया। फिर भी लगातार दो बार दीवार से टकराने के बाद रॉकी और भी अधिक दृढ़ था और जिस भी दुकान पर गया वहां पूछताछ करता रहा, जैसे उसने पहले दो दुकानों पर की थी। इस प्रकार वह बिना रुके लगातार 7 या 8 दुकानों से गुजर गया। दृढ़ता का फल उसे मिला क्योंकि एक दर्जन से अधिक दुकानों पर जाने और कई सड़कों पर घूमने के बाद अंततः उसे एकांत में स्थित छोटी सी दुकान में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। हाँ सर, जो आप ढूंढ रहे हैं वह हमारे पास यही है। मघ की नई कहानियों का आनंद लें। जैसे ही बंदर जैसे चेहरे वाले दुबले पतले दुकानदार ने रॉकी की विनती सुनी, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मुझे यहीं कुछ देर रुकने दीजिए। ये कहकर दुकानदार मुड़ा और दुकान के पिछले कमरे में चला गया और कुछ ही देर बाद वह एक गोल ढाल पकड़े हुए बाहर आया। गोल ढाल रॉकी के पास रखते हुए दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, यही वह जादुई ऊर्जा उपकरण है जिसकी आपको तलाश थी। इसकी कारीगरी या सामग्री से कुछ भी कहना नामुमकिन है। ये बिल्कुल सामान्य जादुई ऊर्जा उपकरण जैसा ही दिखता है और इसके अलावा। इस बीच दुकानदार ने ढाल को पलट दिया और पीछे जड़े जादुई पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोला, और देखो, ये जादुई पत्थर केवल सूक्ष्म जादुई पत्थर जितना ही मान प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका रूप और आकार बिल्कुल एक छोटे जादुई पत्थर जैसा है जो असली पत्थर से बिल्कुल अलग नहीं है। ये कहने के बाद दुकानदार रॉकी पर जोर से हंसा और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुकानदार के विभिन्न व्यवहारों से यह स्पष्ट था कि उसने रॉकी को एक ठग समझ लिया था जो नकली जादुई ऊर्जा उपकरणों का कारोबार करता था। वास्तव में वह जादुई ऊर्जा कवच जो वह रॉकी को दिखा रहा था नकली था। ये ढाल हालांकि एक जादुई पत्थर से जड़ी हुई थी, इसमें केवल एक सूक्ष्म जादुई पत्थर था जो वास्तव में मन प्रदान कर सकता था, लेकिन ये जो मात्रा प्रदान करता था वह युद्ध के लिए अपर्याप्त थी, जिससे ये जादुई ऊर्जा उपकरण का एक वास्तविक नकली टुकड़ा बन गया। यही कारण था कि रॉकी को पिछली दुकानों में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन क्लर्कों के लिए मैना उपकरण का उसका वर्णन नकली की तलाश करने के समान था। वैध हथियार दुकानों के लिए खराब गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण बेचना सख्त वर्जित था, क्योंकि इसे दुकान की प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता था, यहां तक कि सबसे बुनियादी नैतिक आधार पर भी असर पड़ता था। हथियारों और उपकरणों का उद्देश्य क्या है? वे युद्ध के लिए हैं। इसलिए यदि हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता के साथ कोई समस्या है तो ये जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है, और कोई भी हथियार की दुकान इस मुद्दे पर चालाकी करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो इसका मतलब दुकान का अंत हो सकता है। हालांकि अपवाद हमेशा होते हैं, क्योंकि जब जंगल बढ़ता है तो तरह तरह के पक्षी उसमें उड़कर आ जाते हैं। ये जानते हुए कि घटिया हथियार और उपकरण बेचना अनैतिक है, फिर भी कुछ बेईमान व्यापारी थे जो छिपकर ऐसा धंधा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आजकल दुकानदार करते हैं। इससे पहले रॉकी को निश्चित रूप से इन मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसने बॉस के चेहरे पर भाव देखे तो उसे काफी हद तक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। फिर भी उसके बाद उसने न केवल कुछ कहा, बल्कि उसने नकली जादुई ऊर्जा ढाल भी ली, उसे देखा और फिर संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, मानो ढाल बिल्कुल उसकी पसंद की हो। सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उस समय जब रॉकी अपने हाथ में पकड़ी ढाल की ओर लगातार सिर हिला रहा था, मोटे, जो एक दिन से उसका पीछा कर रहा था, अब खुद को रोक नहीं सका और उसे एक तरफ बुला लिया। सर, क्या आप गार्ड कोर के लिए उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं? हाँ, इसमें क्या है? रॉकी ने मोटे की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा, मानो मोटे उसे कुछ ऐसा पूछ रहा हो जो वह पहले से ही जानता हो। दरअसल मोटे एक ऐसा सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब उसे पहले से ही पता था, क्योंकि रॉकी के इटर्नल सिटी में आने के बाद से उसने मोटे के साथ कभी किसी बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं किया था और न ही उसे शामिल किए बिना कोई काम किया था। इसलिए मोटे रॉकी के इरादों से पूरी तरह वाकिफ था। लेकिन मोटे ने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वह जानता था कि रॉकी क्या करने का इरादा रखता है। उसका उद्देश्य रॉकी को याद दिलाना था। ये देखकर कि रॉकी उसकी बात को पूरी तरह से भूल गया है, मोटे को लगा कि उसे विस्तार से बताना चाहिए। सर, क्या आप थंडरहॉक सिटी गार्ड कोर को नए उपकरणों से लैस करने और फिर उन्हें भाड़े के सैनिकों के गिल्ड मिशनों पर ले जाने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर आप सचमुच ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो इस तरह की ढाल काम नहीं आएगी। आखिरकार भाड़े के सैनिकों के समूह के अधिकांश अभियानों में राक्षसों का सामना करना शामिल है, रॉकी की आंखों में देखते हुए मोटे ने सीधे कहा। हालांकि रॉकी के साथ रहते हुए उसे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, मोटे को सिटी लॉर्ड की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो चुका था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इससे मोटे को रॉकी के बारे में कमतर नहीं लगा। दरअसल बात बिल्कुल उलट थी, इससे रॉकी के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। मोटे ने रॉकी के इटर्नल सिटी में आने के बाद से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी थी और यह भी देखा था कि वह दूसरे शहर के सरदारों या रईसों की तरह ऐयाशी की जिंदगी नहीं जी रहा था। रॉकी के पास ऐसा करने के लिए जरूर साधन थे, हालांकि वह अमीर नहीं था, फिर भी वह हजारों सोने के सिक्के जुटा सकता था, जो इटर्नल सिटी में कई दिन बिताने के लिए काफी थे। लेकिन रॉकी ने ऐसा नहीं किया, उसने अपना लगभग सारा पैसा बचा लिया और उसे कभी भी फिजूल खर्ची में खर्च नहीं किया। उसके सभी खर्चों के स्पष्ट उद्देश्य थे और इन सब हरकतों ने मोटे पर बहुत अच्छा असर डाला था, यहां तक कि उसने रॉकी के साथ रहने पर भी विचार किया था। अगर वह ऐसे किसी सिटी लॉर्ड का साथ दे सकता है तो मोटे को लगा कि यह कोई बुरी बात नहीं होगी। हालांकि रॉकी की आज की हरकतों से मोटे को बहुत निराशा हुई। मोटे को पता था कि रॉकी गार्ड कोर के लिए उपकरण खरीदने की योजना बना रहा था और रॉकी अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को अपने गार्ड के लिए इस तरह के घटिया ढंग से बने नकली मैजिक एनर्जी शील्ड नहीं खरीदने चाहिए, है ना? ये व्यवहार मोटे की सहनशीलता की सीमा को पार कर गया था। यदि रॉकी भाड़े के सैनिकों के गिल्ड के कार्यों को करने की योजना बना रहा था तो इसका मतलब था कि वह अपने रक्षकों को भूमि पर राक्षसों के साथ लड़ाई में ले जाएगा। और एक बार जब युद्ध शुरू हो गया तो क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि इन नकली जादुई ऊर्जा ढालों पर निर्भर थंडरहॉक शहर के पहरेदारों का क्या होगा? अगर सैनिकों को ऐसी नकली ढालों वाले राक्षसों से लड़ने के लिए भेजा गया तो क्या रॉकी अपने मातहतों की जिंदगी का मजाक नहीं उड़ा रहा था? इसलिए मोटे अब और नहीं रुक सका। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें रॉकी को याद दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार अब किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं था। यहां तक कि सबसे ठंडे दिल वाला या सबसे मितव्ययी नगर स्वामी भी ऐसा काम नहीं करेगा। सर, मेरा सुझाव है कि आप इस उपकरण का बैच न खरीदें, रॉकी की ओर देखते हुए विशालकाय जानवर ने अत्यंत सावधानी से कहा। हालांकि उनके बहुत समझाने के बावजूद रॉकी ने हालांकि हताश होकर फिर भी अपना सिर हिलाया, मोटे तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये कहने के बाद उसने मोटे की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और सीधे दुकान के मालिक की ओर मुड़ा, मालिक मुझे ऐसी 100 ढालें दे दो। और यह कहने के बाद उसने ये भी पूछा, क्या आपके पास इस तरह के और कवच हैं? हाँ हाँ, धूर्तता से मुस्कुराते हुए मालिक ने तुरंत सिर हिलाया और पहले की तरह दुकान के पीछे जाकर कवच का एक और सेट ले आया। ये कवच पिछली ढालों की तरह नकली जादुई उपकरण थे। ये देखने में सामान्य जादुई कवच से कुछ अलग नहीं थे, लेकिन असल में इनमें सूक्ष्म जादुई पत्थर जड़े हुए थे जिनका कोई असर नहीं था। इस प्रकार का कवच तथा पहले की ढालें जादुई उपकरण की तरह प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वे साधारण उपकरणों के बराबर थी। हालांकि इन वस्तुओं का एक फायदा था, वे सस्ती थी। कवच के 100 सेट और ढालों के 100 सेटों की कीमत केवल 6,000 स्वर्ण मुद्राएं थी और कुछ मोलभाव के बाद रॉकी ने वास्तव में सभी 200 टुकड़े खरीदने के लिए केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। इसमें कोई शक नहीं कि यह कीमत बेहद कम थी, क्योंकि अगर उन्हीं 5,000 सोने के सिक्कों से असली जादुई ऊर्जा उपकरण खरीदे जाते, यहां तक कि सबसे कम 1 स्टार वाले जादुई ऊर्जा उपकरण भी, तो वह ज्यादा से ज्यादा 20 ही खरीद पाता। यानी असली और नकली सामान की कीमत में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर था। रॉकी को ये लेन देन पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने मालिक के साथ यह भी तय कर लिया कि अगली सुबह वह खरीदे गए सारे उपकरण स्काईशिप पर पहुंचा देगा, जहां वे भुगतान का निपटारा कर देंगे। और इस सब के दौरान रॉकी ने मोटे से बचने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसके विभिन्न कार्य मोटे ने देखे, जिससे मोटे और भी निराश हो गया। इस प्रकार जब रॉकी ने लेन देन पूरा कर लिया और दुकान से चला गया, तो मोटे, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, सर मैं पहले वापस जा रहा हूँ। रॉकी से यह कहने के बाद और रॉकी के जवाब का इंतजार किए बिना ही मोटे मुड़ा और तुरंत वहां से चला गया। स्पष्टतः यद्यपि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार ने बहुत कुछ कह दिया। मोटे स्पष्टतः क्रोध से भर गया और उसके घटते हुए आकार को देखते हुए लिलिया ने रॉकी की ओर देखा, क्या तुम उसे समझाओगे नहीं? मुझ पर विशेष सामग्री खोजें, क्या समझाऊं? लिलिया की ओर मुड़ते हुए रॉकी की अभिव्यक्ति असहाय थी, क्या मुझे सबके सामने उसे मैनारून्स के बारे में बताना चाहिए? ये कहने के बाद रॉकी ने उस दिशा में देखा जिस ओर मोटे गया था। वह चिंतित नहीं था, बल्कि संतुष्टि में सिर हिला रहा था। वह निश्चित रूप से जानता था कि हाल की घटना के कारण मोटे उससे निराश था, लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक गलतफहमी थी। रॉकी ने नकली मन उपकरण खरीदने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वह सचमुच अपने पहरेदारों की जान की कीमत पर पैसे बचाना चाहता था। दरअसल थंडरहॉक सिटी गार्ड स्क्वाड की सबसे ज्यादा परवाह मोटे को नहीं, बल्कि रॉकी को थी। वह उसकी कमान के तहत एकमात्र सशस्त्र बल था, जो अभी और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। रॉकी उनके जीवन के बारे में मजाक कैसे कर सकता था? वह कभी भी ऐसा आत्मघाती व्यवहार नहीं करेगा। वास्तव में उसने नकली मन उपकरण इसलिए खरीदा था ताकि भविष्य की लड़ाइयों में थंडरहॉक सिटी के गार्डों के बचने की संभावना बढ़ सके, क्योंकि केवल ऐसे नकली मन उपकरण के साथ ही असली मन रून्स प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि उसने पहले भी कई बार कहा था, रॉकी और थंडरहॉक सिटी की मौजूदा ताकत के चलते मन रून्स को लापरवाही से उजागर नहीं किया जा सकता था। इसलिए रॉकी को उन्हें उजागर किए बिना उनके प्रभाव को अधिकतम करने का कोई तरीका निकालना पड़ा। अभी अभी हुए लेन देन के पीछे यही तर्क था। हालांकि उसने अभी अभी जो मन उपकरण खरीदा था वह नकली था और असली मन उपकरण जैसी शक्ति नहीं दिखा सकता था, लेकिन अगर रॉकी इस उपकरण पर मन रून्स बना ले तो समस्या हल हो जाएगी। एक बार जब इन नकली मन उपकरण पर रून अंकित कर दिए गए तो वे प्रामाणिक रून उपकरण बन गए। और रॉकी ने खास तौर पर ढाल और कवच ही क्यों खरीदे थे? सभी प्रकार के उपकरणों में ये दोनों सबसे महंगे थे। अगर उसे सिर्फ पैसे बचाने थे तो वह कलाई के गार्ड या हेलमेट भी खरीद सकता था, जो कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं। फिर भी रॉकी ने ऐसा नहीं किया। उसने खास तौर पर कवच और ढालों को चुना, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं पर ज्यादा मन रून्स लगाए जा सकते थे। उसने अनुमान लगाया कि कवच और ढालों पर कम से कम 50 प्रथम स्तर के रून्स लगाए जा सकते हैं, जो उनकी रक्षात्मक शक्ति को 1 स्टार मैजिक एनर्जी गियर के स्तर तक लाने के लिए पर्याप्त हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके से मन रून्स को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकेगा। किसी को भी यह संदेह नहीं होगा कि मन उपकरण के इन टुकड़ों में केवल सूक्ष्म जादुई पत्थर जड़े हुए हैं, जबकि मन का वास्तविक स्रोत रून्स ही थे। इस स्तर पर रॉकी के लिए यही सबसे अच्छा उपाय था। यह मन रून्स की उच्च स्तरीय तकनीक को उजागर नहीं करता, बल्कि मन रून्स को अपने प्रभाव प्रकट करने की अनुमति देता। वास्तव में यह एक ऐसी रणनीति थी जिससे एक ही तीर से 2 निशाने साधे जा सकते थे। दुर्भाग्य से उसके इरादों को समझने वाली एकमात्र व्यक्ति लिलिया थी। मोटे जैसे अन्य लोग उसे पूरी तरह से गलत समझते थे। हालांकि रॉकी को मोटे की गलतफहमी की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे लगा कि इस घटना ने उसे मोटे को बेहतर ढंग से समझने का मौका दिया है। हालांकि रॉकी हमेशा से मोटे को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को इतने कम समय से जानते थे कि रॉकी हमेशा मोटे के चरित्र को लेकर आशंकित रहता था। वह मोटे को सिर्फ अपने अधीन काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम बनाने के लिए भर्ती कर रहा था। हालांकि आज मोटे के व्यवहार ने रॉकी को उसके बारे में और भी गहरी समझ दी। इसके अलावा बीस्टमैन का सीधा सादा स्वभाव रॉकी को बहुत पसंद आया। इसलिए हालांकि मोटे गुस्से में चला गया था, रॉकी ने इस प्रतिक्रिया को उसकी पुष्टि के रूप में देखा। उसे ये भी विश्वास था कि एक बार जब वह सब कुछ समझा देगा तो बीस्टमैन उसे जरूर समझ जाएगा। इन हालात में उसने मोटे का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह लिलिया के साथ हथियारों के बाजार में आराम से टहलने निकल गया और वे शाम तक अपने होटल नहीं लौटे। इस दिन न सिर्फ एक सफल सौदा हुआ, बल्कि उसे दुनिया के बहुत से पहलुओं से भी रूबरू कराया गया। इटरनल सिटी में हथियारों का बाजार बेहद विशाल था और वहां तैरते युद्धपोतों और शून्य जादुई कवच सहित कई तरह के उपकरण उपलब्ध थे। मोटे के जाने के बाद रॉकी और लिलिया ने अपना ध्यान शून्य जादुई कवच और आकाश जहाजों पर केंद्रित कर दिया। वे लगातार कई बड़े भंडारों में गए और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक उनके पैर कमजोर नहीं हो गए। अन्वेषण के इस दौर ने रॉकी को यह एहसास दिलाया कि वह आखिरकार दुनिया के साथ सही रास्ते पर आ गया है, क्योंकि उसे तब तक एहसास नहीं हुआ था जब तक उसने खुद नहीं देखा। अब तक तो वह कुएं की तलहटी में पड़ा मेंढक ही था। युग थंडहॉक शहर को बहुत पीछे छोड़ चुका था। यद्यपि राक्षसों ने 100 वर्षों तक पृथ्वी पर कब्जा किया था, फिर भी मनुष्य आकाश की ओर भागने के बाद भी अपने कदम नहीं रोक पाए। वास्तव में इन 100 वर्षों में संपूर्ण विश्व ने विकास और प्रगति की थी और ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। हालांकि आकाश बहुत विशाल और असीम था और बिखरे हुए आकाश नगरों के बीच संचार बेहद खराब था। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन आदि में असंतुलन के साथ प्रत्येक आकाश नगर का विकास बहुत असमान था। शक्तिशाली आकाशीय शहर जैसे कि राक्षस स्तर के शीर्ष 10 दिव्य शहर वैभव में भूमि युग के शीर्ष शहरों से बहुत पहले ही आगे निकल चुके थे तथा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे जिसकी पूर्ववर्तियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शीर्ष 10 दिव्य नगरों के अलावा कुछ बड़े आकाश नगर भी बहुत तेजी से विकसित हुए थे। ये विशाल आकाश नगर भले ही शीर्ष 10 दिव्य नगरों के बराबर न हो, लेकिन इनका आकार भूमि युग के नगरों से कहीं आगे निकल गया था। जहां तक कमजोर आकाश शहरों का प्रश्न है, जैसे कि कुछ बड़े आकाश शहर और अधिकांश मध्यम आकार के आकाश शहर, शहरों का पैमाना कम से कम भूमि युग के स्तर पर लौट आया था और सभी पहलुओं में भूमि युग के शहरों से कोई अंतर नहीं था। आकाश में सबसे कमजोर शहर थंडहॉक सिटी जैसे छोटे आकार के शहर थे। चाहे किसी भी कोण से देखा जाए, ये छोटे आकाशीय शहर बाकी शहरों से एक पूरे युग से भी ज्यादा पीछे थे। आपका अगला अध्याय मफ पर है। रॉकी को पहले इस बात का अंदाजा नहीं था क्योंकि वह पार करने के बाद से थंडहॉक सिटी में ही रह रहा था। हालांकि वह जानता था कि थंडहॉक सिटी कमजोर है, लेकिन क्षैतिज तुलना के अभाव में वह ये नहीं समझ पा रहा था कि पूरे आकाश में ये किस हद तक और किस स्तर पर है। हालांकि इटरनल सिटी में 2 दिन रहने के बाद, विशेष रूप से हथियार बाजार में घूमने के बाद, रॉकी को एहसास हुआ कि थंडहॉक सिटी कितना पिछड़ा हुआ है। उसे अचानक ये बात क्यों समझ में आ गई? क्योंकि किसी भी दुनिया में हथियार ही वह शासक है जो हर किसी की ताकत और कमजोरी को माप सकता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, थंडहॉक सिटी में रॉकी पहले से ही सबसे ताकतवर इंसान था। आखिरकार उसके पास ही शून्य जादुई कवच था और पूरे शहर में शून्य जादुई कवच का सिर्फ एक सेट था। लेकिन इटरनल सिटी में एक मामूली एयर पेट्रोल ऑफिसर भी शून्य जादुई कवच से लैस था। इस तथ्य से ही दोनों शहरों की ताकत और कमजोरी तुरंत स्पष्ट हो गई। एक विनम्र गश्ती अधिकारी को शून्य जादुई कवच से सुसज्जित करने की क्षमता ने इटरनल सिटी की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से दर्शाया और उसकी सैन्य शक्ति को प्रमाणित किया। आर्थिक और सैन्य शक्ति ने मिलकर सभी आकाशीय शहरों में इटरनल सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया। ये वह सब था जिसे हथियारों के शासक से मापा जा सकता था। इसलिए हथियार बाजार का दौरा करने के बाद, विशेष रूप से शून्य जादू कवच के नवीनतम मॉडल को देखने के बाद, रॉकी को अनिवार्य रूप से पता था कि थंडहॉक सिटी वर्तमान दुनिया में किस स्थान पर है और उसने शून्य जादू कवच के बारे में अधिक व्यापक समझ भी प्राप्त की। रॉकी के पास शून्य जादुई कवच का एक सेट था, लेकिन उसका कवच बहुत पुराना हो चुका था। हथियार बाजार में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका शून्य जादुई कवच पहली पीढ़ी का था, जबकि नवीनतम कवच 5वीं पीढ़ी का था। इस अंतर ने रॉकी को काफी झटका दिया। इसलिए अगले कई दिनों तक बेकार में भटकने के बजाय वह इटरनल सिटी के पुस्तकालय में ही डूबा रहा। ये कहना जरूरी है कि इटरनल सिटी आने के बाद रॉकी की अंतर्दृष्टि में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और भविष्य के लिए उसकी दृष्टि और लक्ष्य धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। इन परिस्थितियों में केवल हथियारों और उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए मन रून्स का उपयोग करना अब उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने मन रून्स का उपयोग अधिक क्षेत्रों में करने और रून्स के मूल्य को अधिकतम करने की योजना बनाई। इस तरह के विचार को साकार करने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए अगले कई दिनों तक रॉकी जल्दी निकल जाता और देर से लौटता तथा अपना सारा समय पुस्तकालय में बिताता। बस यूं ही 3 दिन बीत गए। इस दौरान लिलिया को थंडहॉक सिटी के साथ व्यापार करने के लिए एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल गया था और सब कुछ तय हो गया था। वे पहले ही निकल सकते थे, लेकिन रॉकी की वजह से उन्हें इटरनल सिटी में ही रहना पड़ा। जब से रॉकी ने पुस्तकालय में आना जाना शुरू किया, वह जय हो गया। वह ज्ञान के सागर में पूरी तरह डूब गया, जिसके कारण वे कई दिनों तक इटरनल सिटी में रुके। आज रॉकी की लाइब्रेरी में आखिरी यात्रा होगी, क्योंकि एलिन ने उसे अंतिम चेतावनी दे दी थी। इटरनल सिटी में उनके खाने पीने और रहने का खर्च पहले ही 500 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा हो चुका था और प्रस्थान कर के साथ उनका खर्च 1000 से भी ज्यादा हो चुका था। ये खर्च एलिन के पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा था और उन्हें वहां से जाना पड़ा। इन परिस्थितियों में रॉकी को जल्दी से पुस्तकालय में अपनी जरूरत की सभी किताबें ढूंढनी पड़ी, फिर उन सभी को एक बार में खरीदना पड़ा और थंडरहॉक सिटी लौटने के बाद धीरे धीरे उनका अध्ययन करने की योजना बनाई। इस किताब की भी जरूरत पड़ेगी। जादुई तोप निर्माण के सिद्धांत नामक पुस्तक के कुछ पृष्ठों को पलटने के बाद रॉकी ने इसे लिलिया को सौंप दिया और बाद में इसे खरीदने का इरादा किया। लेकिन उसी वक्त एक युवती उसके पास से गुजरी। रॉकी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान किताब पर था, लेकिन उस युवती ने अचानक अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, रॉकी क्या ये तुम हो? हम किसी के बुलाने की आवाज सुनकर रॉकी रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी उसने देखा कि महिला उसकी ओर देख रही है। जिस युवती ने उसका नाम पुकारा था उसके बारे में रॉकी काफी उलझन में था। क्या तुम मुझे बुला रही हो? उसने अपनी ओर इशारा करते हुए अनिश्चितता से पूछा, क्योंकि वह दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। रॉकी क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इस समय वह युवती उसके पास आए और उसे ऐसे भाव से देखने लगी जिसे बयान करना कठिन था। क्या मैं आपको जानता हूँ? उस औरत की बातों ने रॉकी को गौर से देखने के लिए प्रेरित किया। उसने देखा कि वह बहुत खूबसूरत थी और उसने बड़े करीने से कपड़े पहने थे जिससे एलिन जैसी झलक मिल रही थी। जाहिर है कि वह कुलीन परिवार की थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह इस महिला को नहीं जानता। रॉकी को काफी देर तक उसे पहचानने में नाकाम देखकर महिला की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई, लेकिन अंततः उसने कहा, रॉकी मैं सिरिल हूँ, हम एक साल पहले मैरेंटे शहर में मिले थे। मैरेंटे शहर? ये नाम सुनते ही रॉकी को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर अचानक उसे याद आया उसके पिता का परिवार मैरेंटे परिवार था और स्काई सिटी जहाँ ये परिवार रहता था उसे मैरेंटे सिटी कहा जाता था। इस एहसास के साथ ही रॉकी को तुरंत याद आ गया कि उसके सामने खड़ी महिला कौन थी और वह आश्चर्य से बोला, चचेरी बहन। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और रॉकी खुद को रोक नहीं सका और जोर से रोने लगा। आखिरकार उसे याद आया कि सिरिल नाम की यह महिला कौन थी। वह उसकी चचेरी बहन थी। तथाकथित चचेरे भाई स्वाभाविक रूप से उसके पिता की पीढ़ी के रिश्तेदारों को संदर्भित करते थे, जिसका अर्थ यह है कि सिरिल मैरेंटे परिवार से थे। रॉकी के पिता मैरेंटे परिवार से थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद इस परिवार के लोगों ने रॉकी को विरासत में मिली हर चीज छीन ली, यहां तक कि 30,000 की आबादी वाला एक मध्यम आकार का स्काई सिटी भी शामिल था। ये घटना, चाहे वह समय यात्रा से पहले रॉकी के लिए हो या वर्तमान रॉकी के लिए, उसकी हड्डियों में गहराई से अंकित हो गई थी। शुरू में रॉकी ने सोचा था कि इस जीवन में मैरेंटे परिवार से उसका कभी कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि अब वह नहीं रहा जो वह पहले था। फिर भी उसने आज मैरेंटे परिवार के किसी व्यक्ति से मुलाकात की उम्मीद नहीं की थी, इसे उसे सचमुच आश्चर्य हुआ। हालांकि कुछ पल के आश्चर्य के बाद उसने अपनी भावनाओं को शांत किया, न तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया और न ही किसी रिश्तेदार को देखकर खुशी हुई। उसने बस सिरिल की तरफ सिर हिलाया मानो किसी अजनबी को देख रहा हो और फिर मुड़कर चला गया। रॉकी के समय में यात्रा करने से पहले की विभिन्न घटनाओं की उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। इसी तरह उसे मैरेंटे परिवार से भी कोई लगाव नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में वह उस परिवार से, उसके किसी भी सदस्य से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। जहां तक उसके चचेरे भाई सिरिल की बात है तो उसे और भी कम आभास हुआ। शायद ये सच था कि वे एक बार मिले थे जैसा कि उसने कहा था, लेकिन मैरेंटे परिवार से अपनी नापसंदगी और जानबूझकर दूरी बनाए रखने के कारण रॉकी का रिश्तेदारी से चिपके रहने का कोई इरादा नहीं था। इंतजार। रॉकी को भावशून्य चेहरे के साथ जाते हुए देखकर सिरिल ने सहज ही उसे पुकारना चाहा, लेकिन आखिरी क्षण में खुद को रोक लिया। उसके होठों तक पहुंचे शब्द अनकहे रह गए और अंत में रॉकी की पीछे हत्ती हुई आकृति को देखकर वह बस आहें ही भर सकी। रॉकी की प्रतिक्रिया से सिरिल को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, हालांकि इससे वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि परिवार ने रॉकी के साथ क्या किया था। आखिरकार रॉकी के पिता के निधन के बाद परिवार ने वह सब कुछ छीन लिया था जो उसे विरासत में मिलना चाहिए था। जाहिर है ऐसा करने से रॉकी का पक्ष तो नहीं मिल सकता था, यह उसके साथ और भी ज्यादा अन्याय था। फिर भी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। मैरेंटे परिवार एक शक्तिशाली और विशाल परिवार था जिसका लंबा इतिहास था, 10 से ज्यादा स्काई सिटीज पर उसका नियंत्रण था और पूरे आकाश में उसकी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी। इतने विशाल परिवार में गहरे आंतरिक संघर्ष होना लाजमी था और इसी वजह से रॉकी के पिता ने परिवार छोड़ दिया था। लेकिन कोई इतने बड़े परिवार से कैसे अलग हो सकता है? यही कारण है कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार ने रॉकी से उसका सब कुछ छीन लिया, जिसका परिणाम भी पारिवारिक संघर्षों के कारण हुआ। सिरिल, जो पहले से ही परिवार के प्रबंधन में शामिल थी, इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ थी। रॉकी को जो कुछ भी विरासत में मिला था उसे छीनने के फैसले में भी वह शामिल थी। इसीलिए रॉकी को पहचानने के बाद उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह जानती थी कि रॉकी थंडरहॉक सिटी में रहता है और हालांकि वह खुद कभी वहां नहीं गई थी, फिर भी उस शहर की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था जिसे परिवार छोड़ने का इरादा रखता था। इसलिए जब सिरिल ने रॉकी को पहचाना तो उसे कुछ अपराध बोध हुआ। बहन, तुम्हें क्या हुआ है? मर्फ पर रोमांच खोजें। जैसे ही सिरिल हतप्रभ होकर रॉकी की गायब होती आकृति को देख रहा था, लगभग उसी उम्र का एक युवक वहां आया। बात करते हुए उसने उस दिशा में नजर घुमाई जहां रॉकी गायब हुआ था और उसकी नजर रॉकी की लुप्त होती आकृति पर पड़ी। बहन, वह व्यक्ति कौन है? वह तुम्हारा चचेरा भाई है, रॉकी। होश में आते ही सिरिल ने आह भरी। रॉकी, ये नाम सुनकर युवक ने एक क्षण सोचा, फिर उसके चेहरे पर एहसास का भाव आया। ओह, अब मुझे याद आ गया, बोलते हुए युवक ने रॉकी की ओर देखा। बहन, क्या ये वही है जिसकी विरासत परिवार ने छीन ली थी? मैंने सुना है कि यह आदमी बहुत ही कमजोर है। जब परिवार उसका स्काई सिटी छीन रहा था तो इसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। बकवास मत करो, वह तुम्हारा चचेरा भाई है। अपने छोटे भाई की ओर सिर घुमाकर घूरते हुए सिरिल काफी नाराज थी, लेकिन युवक ने बस कंधे उचका दिए, एक लापरवाह भाव दिखाते हुए, छी, मुझे ऐसा चचेरा भाई नहीं चाहिए जो इतना असफल हो। ऐसा कहने के बाद अचानक युवक को कुछ सूझा और उसने कहा, बहन, क्या परिवार ने थंडहॉक सिटी इस आदमी को नहीं दी थी? हाँ, इसमें क्या है, मुझे लगता है कि मैंने पिताजी को उस दिन थंडहॉक सिटी का जिक्र करते सुना था। कि उसका नाम क्या है? बैरन बोलिन। ठीक है, बैरन बोलिन ने हाल ही में परिवार के लिए एक बड़ी खदान हासिल की है। हालांकि यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन पिताजी और बाकी लोग उसे इनाम दिए बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे बैरन बोलिन को थंडहॉक सिटी देने की भी योजना बना रहे थे। क्या? ये सुनकर सिरिल ने तुरंत अपने भाई की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। .. रॉकी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाइब्रेरी से निकलने के बाद सिरिल के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हालांकि वह उसे पहचानता था और इससे कुछ अप्रिय यादें ताजा हो गईं, फिर भी उसने इसे दिल पर नहीं लिया। दरअसल लाइब्रेरी से निकलते ही वह सिरिल और माइरेंटे परिवार से जुड़ी सारी बातें पीछे छोड़ आया था। होटल लौटने पर सभी ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और फिर पूरी फसल के साथ वे अंततः इटर्नल सिटी से चले गए। रॉकी और उसके समूह के लिए इटर्नल सिटी की यात्रा बेहद फायदेमंद रही। उन्होंने न सिर्फ ग्रॉक स्टोन को ऊंची कीमत पर बेचा, बल्कि एक नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी ढूंढा, एक तकनीशियन को नियुक्त किया और गार्ड कोर के लिए नए उपकरण भी खरीदे। उन्होंने न सिर्फ जाने से पहले तय किए गए सभी लक्ष्य पूरे किए, बल्कि उनसे आगे भी निकल गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉकी थंडहॉक सिटी लौटते हुए बहुत अच्छे मूड में था। लाइब्रेरी में जो कुछ भी हुआ था उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। दरअसल थंडहॉक सिटी वापस पहुंचकर उसने अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए गहरी नींद ली, जिसके बाद वह बड़े कदम उठाने के लिए तैयार था। क्योंकि इटर्नल सिटी से लौटने के बाद रॉकी ने अपनी जरूरत की हर चीज पहले ही तैयार कर ली थी। अब वह थंडहॉक सिटी में आर्थिक सुधार करेगा। यह उसके और थंडहॉक सिटी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। रॉकी ने इसके लिए इटर्नल सिटी से दो तकनीशियनों को भी बुलाया था और थंडहॉक सिटी में आर्थिक सुधारों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए चमड़े का एक बैच भी खरीदा था। हालांकि अगले दिन थंडहॉक सिटी में सुधार आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही एक नई खबर आ गई। एजियोर कॉमर्स गिल्ड ने इस समय किसी को यह पूछने के लिए भेजा था कि थंडहॉक सिटी का अनाज खरीदेगा और कितना खरीदेगा। ये जानकर रॉकी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। रॉकी ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि थंडहॉक सिटी लौटने के तुरंत बाद उसे एजियोर कॉमर्स गिल्ड से एक संदेश प्राप्त होगा, विशेष रूप से यह पूछने वाला कि वह कितना भोजन खरीदना चाहता है। रॉकी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि एजियोर कॉमर्स गिल्ड को अभी भी कुछ होश नहीं था। उस आखिरी अप्रिय सौदे के बाद क्या उन्हें सचमुच लगता था कि थंडहॉक सिटी उनके नियंत्रण में है? वास्तव में थंडहॉक सिटी को अब एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ कोई व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एलिन ने बहुत पहले ही इटर्नल सिटी के एक अन्य चैम्बर के साथ एक सौदे पर बातचीत कर ली थी। इस चैम्बर को रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता था, जो इटर्नल सिटी में मुख्यालय वाला एक नवस्थापित व्यवसाय था। हालांकि एजियोर कॉमर्स गिल्ड की तुलना में इसका आकार छोटा था, फिर भी इसी वजह से वे अपने ग्राहकों को धमकाते नहीं थे। इसके अलावा नवस्थापित होने के कारण रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को थंडहॉक सिटी जैसे एक स्थिर प्रमुख क्लाइंट की भी तत्काल आवश्यकता थी। एजियोर कॉमर्स गिल्ड की नज़र में थंडहॉक एक छोटा क्लाइंट था, लेकिन रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए थंडहॉक एक प्रमुख क्लाइंट माना जा सकता था। इसलिए जब एलिन ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत उसकी शर्तों पर सहमति व्यक्त की। न केवल आवश्यक भोजन और धागा लगातार आपूर्ति करने के लिए सहमत हुए, बल्कि एजियोर कॉमर्स गिल्ड की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल मूल्य पर भी। इसके लागू होने के बाद थंडहॉक सिटी को अब एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। हालांकि रॉकी ने ऐसा नहीं किया। एलिन, उन्होंने कहा, एजियोर कॉमर्स गिल्ड के लोगों से कहो कि हमें पिछले साल के हिसाब से ही खाने की आपूर्ति चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जहां तक कीमत की बात है, हम बाद में बात करेंगे, बस खाना जल्दी से यहां पहुंचा दो। महाराज आपने क्या कहा? रॉकी की तरफ देखते हुए एलीन को शक हुआ कि क्या उसने सही सुना है। महाराज हमने रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समझौता कर लिया है, वे इस साल का राशन 3 दिन में पहुंचा देंगे और मैंने जमानत भी दे दी है। हालांकि थंडहॉक सिटी इटर्नल सिटी के आसपास वापस आ गया था, लेकिन शहर तुरंत नहीं गया क्योंकि कुछ ही दिनों में रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स खाना पहुंचाने वाला था। इसलिए एलिन समझ नहीं पा रही थी कि रॉकी अब भी एजियोर कॉमर्स गिल्ड से खाना क्यों पहुंचाना चाहता था। मुझे पता है, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि इस वर्ष एजियोर कॉमर्स गिल्ड की खाद्य आपूर्ति कैसी दिखती है, रॉकी ने धूर्त मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह ज्यादा कुछ न पूछे और जैसा वह कहे वैसा ही करे। एलिन जो बहुत ही चतुर थी तुरंत समझ गई कि रॉकी क्या करने वाला था और बाद में उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसके दिमाग में बचकाना शब्द आया। हालांकि उसके मन में रॉकी का दृष्टिकोण काफी बचकाना लग रहा था, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया था क्योंकि वह भी जियाशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखने के लिए उत्सुक थी। वह बूढ़ा विकृत व्यक्ति जिसने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी जब वह भोजन से लदा हुआ थंडहॉक सिटी में पहुंचा। एजियोर कॉमर्स गिल्ड के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद एलिन तुरंत वहां से नहीं गई क्योंकि उसे आगे जिस विषय पर बात करनी थी वह अधिक गंभीर था। महाराज प्रशिक्षण वर्ग के लिए नोटिस पोस्ट कर दिया गया है। ओह, प्रतिक्रिया कैसी रही? एलिन से ये सुनकर रॉकी ने तुरंत पूछा। इससे पहले उन्होंने टेक्नीशियन गिल्ड से 2 तकनीशियनों को नियुक्त किया था और उन्हें थंडहॉक सिटी में पढ़ाना शुरू करवाया था। उन्होंने निवासियों के लिए चमड़ा बनाने के कौशल सीखने हेतु ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया था जिसका जिक्र एलिन कर रही थी। आज सुबह सुबह रॉकी ने थंडहॉक सिटी के शहरी क्षेत्रों में लोगों से नोटिस लगवाए, इस उम्मीद के साथ कि वहां के निवासी नए कौशल सीखने के लिए उत्सुकता से नामांकन कराएंगे और सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क थे। फिर भी उसकी उत्सुक उम्मीदों के सामने एलिन ने सचमुच उसे बेबसी से देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। महाराज निवासियों की प्रतिक्रिया ज्यादा उत्साहजनक नहीं है, नई कहानियों का अनुभव करें। रॉकी को देखते हुए एलिन, हालांकि उसके उत्साह को कम करने के लिए अनिच्छुक थी, फिर भी उसे सच बताना पड़ा क्योंकि वास्तविकता वही थी जो उसने कही थी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा पोस्ट किए गए नोटिस पर प्रतिक्रिया ठंडी थी और पूरी सुबह किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। वास्तव में यह अपेक्षित था क्योंकि थंडहॉक शहर के निवासी लंबे समय से पुरुषों द्वारा खेतों में हल चलाने और महिलाओं द्वारा घर पर बुनाई करने की जीवन शैली के आदि थे और किसी को भी इस तरह की जीवन शैली में कुछ भी गलत नहीं लगता था, इसलिए कोई भी प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, महोदय मेरा मानना है कि आपको सीधे आदेश जारी कर देना चाहिए कि शहर के निवासी प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लें क्योंकि यह अधिक प्रभावी होगा। रॉकी की ओर देखते हुए एलिन ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण कक्षाएं स्थापित करना कोई समस्या नहीं थी, आखिरकार चमड़ा निर्माण थंडहॉक सिटी के लिए एक नई तकनीक थी और निवासियों को वास्तव में इसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता थी, लेकिन एलिन को कभी समझ नहीं आया कि पंजीकरण स्वैच्छिक क्यों होना चाहिए। नगर स्वामी होने के नाते रॉकी बस आदेश दे सकता था कि वह निवासियों से क्या करवाना चाहता है और शहर में भला कौन नगर स्वामी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। याद रखना चाहिए, इस जमाने में स्काई सिटी के निवासी ऊपर देखकर आकाश नहीं देखते बल्कि स्काई सिटी का नगर स्वामी ही उनका आकाश है। फिर भी रॉकी ने ऐसा नहीं किया, उसने निवासियों से स्वेच्छा से नामांकन कराने पर जोर दिया जिसे एलिन समझ नहीं सकी। मुड़ा हुआ तरबूज मीठा नहीं होता। एलिन की गलतफहमी कुछ ऐसी थी जिसे रॉकी वास्तव में अच्छी तरह से समझता था। वह वास्तव में एक ही आदेश से शहर के सभी लोगों को नई तकनीक सिखा सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा दयालुता के कारण नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि उनके मन में एक दीर्घकालिक योजना थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सुधार का उपयोग निवासियों की पहल को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जिससे वे स्वेच्छा से सुधार को स्वीकार कर सकें और यहां तक कि सक्रिय रूप से सुधार की मांग भी कर सकें क्योंकि इससे भविष्य के मामलों को संभालना आसान हो जाएगा। इसलिए एक पल सोचने के बाद रॉकी ने एलिन से कहा, एलिन तुरंत किसी को भेजकर घोषणा बदलवाओ। निवासियों को बता दो कि इस प्रशिक्षण सत्र की समय सीमा अब से 1 सप्ताह बाद है। इसके बाद उन्हें अगले सत्र का इंतजार करना होगा। यह सर, क्या आप निश्चित हैं कि हमें यह करना चाहिए? रॉकी के शब्दों से एलिन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मौजूदा हालात ये थे कि कोई भी प्रशिक्षण कक्षाओं में आने को तैयार नहीं था। ऐसे में पंजीकरण की समय सीमा तय करने से उपस्थिति और भी कम हो जाएगी, ऐसा एलिन ने सोचा क्योंकि वह रॉकी के विचारों को समझने में लगातार असमर्थ होती जा रही थी। फिर भी उसकी उलझन को देखते हुए रॉकी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने एलिन से बस इतना कहा कि वह उसके निर्देशों का पालन करे क्योंकि उसे लगता था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा पहले प्रशिक्षण सत्र के बाद थंडहॉक शहर के निवासियों को प्रशिक्षण के बारे में अपना मन बदलने में। महोदय, तभी जब रॉकी और एलिन प्रशिक्षण कक्षा पर चर्चा कर रहे थे लिलिया जल्दी से वहां पहुंची। लिलिया क्या बात है? लिलिया को अपनी ओर तेजी से आते देख रॉकी की भौहें तन गईं। उसे इस समय गार्ड कोर के साथ होना चाहिए था, फिर वह अचानक उसके पास क्यों आ गई? अब तक लिलिया रॉकी के पास पहुंच चुकी थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, सर मोटे जा रहा है, पुनश्च नई किताब सिफारिश की मांग कर रही है, संग्रह की मांग कर रही है, आपकी हर सिफारिश टिकट, हर संग्रह लिटिल डिटेक्टिव के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, उम्मीद है कि आप सब और ज्यादा समर्थन करेंगे, और ज्यादा समर्थन, और ज्यादा समर्थन। पिछली गलतफहमी के बाद से मोटे और रॉकी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि रॉकी ने समय से पहले इटर्नल सिटी नहीं छोड़ा था, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने रॉकी का पीछा करना बंद कर दिया। उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से बहुत कम बात की। और जैसे ही वह थंडरहॉक सिटी लौटा, मोटे लिलिया को ढूंढने गया और उसे बताया कि वह जा रहा है। ये स्पष्ट था कि पिछली घटना ने रॉकी के साथ मोटे को बहुत निराश कर दिया था, इस हद तक कि उसने कुछ समय के लिए थंडरहॉक सिटी का निरीक्षण करने का विचार भी त्याग दिया और वापस आते ही वहां से चले जाने की योजना बनाई। यद्यपि लिलिया को अच्छी तरह पता था कि मोटे ने हथियार को गलत समझा था, लेकिन वह उसे यह बात समझा नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास रॉकी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम मोटे को सिटी लॉर्ड के भवन में ले आओ, सीधे प्रयोगशाला में आकर मुझसे मिलो। अनुसंधान, रॉकी क्या तुम करने जा रहे हो? रॉकी की बातें सुनकर लिलिया थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि वह अकेली थी जो उसके शब्दों का अर्थ समझ सकती थी। जाओ, मैंने इसका हल निकाल लिया है। लिलिया को विस्तृत विवरण दिए बिना रॉकी ने उसे केवल ये कहा कि वह उसके निर्देशों के अनुसार मोटे को लेकर आए। मोटे का जाना किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी, कम से कम रॉकी के लिए तो नहीं, क्योंकि मोटे के चरित्र का अंदाजा लगाना आसान था। एक बीस्टमैन होने के नाते उसे बातों को घुमा फिरा कर कहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उनके रास्ते एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे तो उनके लिए अलग हो जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। बहरहाल, दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर करने का रॉकी के पास स्वाभाविक रूप से एक रास्ता था। लिलिया को निर्देश देने के बाद उसने एलिन की ओर भी रुख किया। एलिन, अभी मत जाओ, मेरे साथ प्रयोगशाला चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इस समय एलिन जाने को तैयार थी क्योंकि उसे अभी भी काम था, लेकिन रॉकी की बात सुनकर कुछ उत्सुकता के साथ उसने भी रुकने का फैसला किया। नगर स्वामी के भवन में शोध प्रयोगशाला कब बनी थी? लिलिया ने पहली बार इसके बारे में सुना था और वह उत्सुकता से भर गई। इसके बाद लिलिया मोटे को ढूंढने चली गई, जबकि रॉकी उनसे पहले एलिन को अपनी प्रयोगशाला में ले गया। एलिन को प्रयोगशाला में लाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, और जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, एलिन ने जो कुछ भी देखा उससे वह दंग रह गई। रॉकी की प्रयोगशाला विभिन्न शोध उपकरणों से भरी हुई थी, जो असामान्य नहीं था, लेकिन एक चतुर व्यापारी के रूप में, जिसकी दूरदर्शिता सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, एलिन ने एक नज़र में महसूस किया कि ये उपकरण वर्तमान युग से संबंधित नहीं थे, वे सभी भूमि युग से थे। इस खोज ने एलिन को आश्चर्यचकित कर दिया, और जब उसने अधिक बारीकी से निरीक्षण किया तो उसने देखा कि कमरे में कई हथियार और उपकरण भी थे, जो अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। यहां तक कि रॉकी का शून्य जादू कवच भी कमरे में प्रदर्शित किया गया था। यहां तक कि शून्य जादू कवच का भी उपयोग किया जा रहा था। रॉकी आखिर किस पर शोध कर रहा था? एलिन के सामने जो दृश्य थे वे उसे देखकर दंग रह गए, और वह कितनी चतुर थी। कुछ पल के सदमे के बाद उसे तुरंत समझ आ गया कि रॉकी उसे यहां क्यों लाया था, और रॉकी क्या करने वाला है। ये सोचकर ही एलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि आज एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है जिसका उस पर गहरा असर हो सकता है। जहां चाहो वहां बैठ जाओ। इस समय रॉकी, जो उसे प्रयोगशाला में लाया था, ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एलिन से कहा कि वह कहीं भी बैठ जाए, और स्पष्ट रूप से उसका इरादा सभी के आ जाने के बाद बात करने का था। कुछ ही देर बाद प्रयोगशाला का दरवाजा फिर से खोला गया। लिलिया मोटे के साथ वहां पहुंची। एलिन के विपरीत, जो बहुत ही सावधान और होशियार थी, लिलिया द्वारा लाए गए मोटे ने प्रयोगशाला की असाधारणता पर ध्यान नहीं दिया। प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही उसने बस रॉकी की तरफ देखा और फिर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। अब जब सब लोग यहाँ हैं, मोटे को अंदर लाए जाने के बाद रॉकी उन कुछ लोगों के सामने खड़ा हो गया। बिना किसी विनम्रता के उसने रून लॉन्गसवॉर्ड उठाया और धीरे से बोला, ये लॉन्गसवॉर्ड मुझे इस जमीन पर स्थित एक लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिला था। इस साधारण वाक्य से एलिन और उसके सामने खड़े मोटे दोनों ही दंग रह गए। इस तलवार का कोई नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे रून तलवार कहा जा सकता है, क्योंकि तलवार पर बने पैटर्न को मन रून कहा जाता है। रॉकी ने एलिन और मोटे दोनों के चेहरों पर स्तब्ध भावों को नजरअंदाज किया और बोलते हुए तलवार पर मन रून्स को सक्रिय कर दिया। पल भर में उसके हाथ में तलवार चमक उठी, और उसी समय उसकी कलाई के एक हल्के से झटके से तलवार की रोशनी का एक तेज झोंका सबके सामने प्रकट हुआ। इन मन रूनों का आविष्कार भूमि युग के दौरान वेंसेल नामक एक मास्टर द्वारा जादुई पत्थरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। ये कहने के बाद रॉकी ने अंततः एलिन और मोटे की ओर देखा, और ठीक उसी समय उनके चेहरे देख लिए जो सदमे से हौंफ रहे थे। दरअसल, जिस पल रॉकी ने बोलना शुरू किया, दोनों ही दंग रह गए। और जब रॉकी ने मन रूंस का जिक्र किया, तो उत्सुक एलिन और बिल्कुल तैयार न दिख रहे मोटे दोनों ही अचंभित रह गए। मन रूंस, क्या ये लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की शीर्ष स्तरीय जादुई तकनीक हो सकती है? रॉकी का यही मतलब था, है ना? उन्होंने गलतफहमी तो नहीं पाल ली थी, है ना? रॉकी ने जो कुछ कहा था उस पर विचार करने पर, यद्यपि जानकारी संक्षिप्त थी, दोनों ही काफी देर तक स्तब्ध रह गए, यहां तक कि उन्हें अपनी समझ पर भी संदेह होने लगा। और अगर उन्होंने सही ढंग से समझा था तो यह हेलिन और मोटे दोनों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। उनमें से दो, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यापारी और दूसरा एक अनुभवी दानव शिकारी, को रॉकी द्वारा मैना रून्स के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं थी, वे पहले ही इस तकनीक की अपार क्षमता को समझ चुके थे। तो जब रॉकी ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी उसकी तरफ देखा, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी के पास इतनी शक्तिशाली और इतनी क्षमता वाली तकनीक होगी। वे इस बात से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे कि रॉकी ने इतनी सहजता से यह बात उनसे कह दी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि ऐसी बात किसी को पता चल गई तो पूरे आकाश में हलचल मच जाएगी। उस समय रॉकी ने बोलना जारी रखा तथा एलिन और मोटे को मैना रून्स के विभिन्न संभावित उपयोगों के बारे में विस्तार से बताया। और जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसके सामने खड़ी एलिन और मोटे पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं। वे ऐसे स्थिर खड़ी रही मानो वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई हों, उनके दिमाग एक खाली स्लेट की तरह थे। महाराज, आपको हमें यह नहीं बताना चाहिए था, एलिन बेकाबू होकर फुसफुसाई। उसे न सिर्फ लगा कि रॉकी को यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, बल्कि उसे यह भी लगा कि उसे यह बात सुननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसे सुनना भी खुद पर मुसीबत ला सकता है। मुझे पता है, हालांकि एलिन के फुसफुसाए शब्द रॉकी ने सुन लिए। उसने बेबसी से भरा चेहरा दिखाया और बड़े आत्मा मजाक के साथ कहा, इतनी बेहतरीन तकनीक का मुझ जैसे शहर के सरदार के हाथों में पड़ना वाकई बुरी बात लगती है। आत्महीन मुस्कान के साथ रॉकी ने एलिन और मोटे की ओर देखा। मुझे ये भी पता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो मेरा और थंडरहॉक सिटी का अंत हो जाएगा। मैंने कई बार मन रूंस को एक वस्तु की तरह बेचने के बारे में भी सोचा है। कम से कम इस तरह मैं अपनी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है अनिच्छुक। जैसे ही उसने यह बात कही, रॉकी के चेहरे के भाव बदल गए, उसकी लाचारी और आत्मा उपहास एक क्षण में गायब हो गए। मैं हमेशा के लिए एक छोटे शहर का नगर स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं अपने शहर को हमेशा के लिए परेशान नहीं होने देना चाहता, मैं ऐसा साधारण जीवन नहीं जीना चाहता। तो मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, मैं मन रून्स के साथ एक जुआ खेलना चाहता हूँ, मैं मन रून्स का उपयोग करके थंडरहॉक सिटी को आकाश में उड़ान भरने देना चाहता हूँ, मैं आकाश में विशाल जानवरों के साथ धरती पर राक्षसों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, अकेले नहीं। ये कहकर रॉकी ने एलिन और मोटे की ओर देखा। इसलिए मैंने बिना कुछ छिपाए आपको सब कुछ बताने का निर्णय लिया है। मुझे आशा है आप मेरी मदद करेंगे। इस दिन रॉकी ने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किया जिसका जोखिम स्तर दानवों का शिकार करने से कहीं अधिक था, और यह भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी मिशनों से भी अधिक था जो एलिन और मोटे के साथ मनरून का रहस्य साझा कर रहा था। कम से कम कहें तो उसकी हरकतें किसी के लिए भी अप्रत्याशित थीं, यहां तक कि एलिन और मोटे ने भी ऐसी विस्फोटक खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी। ये बेहद खतरनाक कदम था, क्योंकि अगर दोनों में से किसी ने भी सुनी हुई सारी बातें लीक कर दी तो रॉकी और थंडरहॉक सिटी का हश्र बताने के लिए सिर्फ तीन शब्द ही बचते, पूरी तरह से विनाश। फिर भी ये कदम उचित भी था, क्योंकि रॉकी को अपने लिए एक आधार की आवश्यकता थी। केवल अपनी नींव के साथ ही वह स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता था और मजबूत बन सकता था, और उसने जो आधार चुना वह लिलिया, एलिन और मोटे थे। लिलिया का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, रॉकी उस पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था। जहां तक एलिन और मोटे की बात है, उनसे कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रॉकी उन्हें भी भरोसेमंद मानने लगा। यहीं पर उसकी दुस्साहसता निहित थी, क्योंकि रॉकी की नज़र में यद्यपि एलिन और मोटे विश्वसनीय थे, लेकिन वे लिलिया पर उसके पूर्ण विश्वास के स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। फिर भी उसने अपना सबसे बड़ा रहस्य उन दोनों के साथ साझा किया, क्योंकि रॉकी एक बात जानता था, अत्यधिक सावधानी निराधार संदेह के समान है, और एक बार जब आप उस दुष्चक्र में फंस जाते हैं तो भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचता। इस स्थिति में उसने जुआ खेलने का निर्णय लिया, उसने शर्त लगाई कि उसने इन दो लोगों के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाया था और उसका भरोसा गलत नहीं था। शोध कक्ष में सन्नाटा एक समय गहरा हो गया था। रॉकी के बोलने के बाद उसने आगे बोलना जारी नहीं रखा, बल्कि केवल एलिन और मोटे को देखता रहा, मानो वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि वे सुनी हुई हर बात को पचा लें। वास्तव में एलिन और मोटे को अपने दिमाग में सब कुछ समझने के लिए समय की आवश्यकता थी, और अपनी बुद्धि और अनुभव के साथ उन्होंने रॉकी के बोलना समाप्त करते ही उसके इरादे समझ लिए थे। हालांकि यह एक ऐसा मामला था जिस पर उन्हें बहुत सोच समझ कर विचार करना था, क्योंकि एक बार फैसला लेने के बाद इसका असर उनके बाकी जीवन पर पड़ सकता था। इसलिए दोनों में से किसी ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा और दोनों चुप हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, 10 मिनट से ज्यादा समय बीतने के बाद मोटे ने सबसे पहले अपनी पसंद बताई। उसने रॉकी की तरफ देखा, फिर धीरे से उसके सामने घुटने टेक दिए। नगरपालक बीस्टमैन मोटे आपके प्रति वफादारी की शपथ लेता है। मैं आपके हाथ में भला या ढाल बनने को तैयार हूँ। मैं आपका अनुसरण करने और आपको कभी धोखा न देने की शपथ लेता हूँ। बीस्टमैन मोटे ने रॉकी के प्रति वफादारी की शपथ ली, और उसके शपथ लेने के बाद एलिन ने भी अपनी पसंद बताई। वह भी मोटे की तरह रॉकी के सामने घुटनों के बल बैठी और अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। नगरपाल एलिन आपके प्रति वफादारी की शपथ लेती है। आपकी महत्वाकांक्षाएं मेरे लक्ष्य हैं, आपके सपने मेरी इच्छाएं हैं। मैं आपका अनुसरण करूंगी, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी या त्यागूंगी। एलिन रॉकी के प्रति वफादारी की शपथ ली। नगरपाल लिलिया आपके प्रति वफादारी की शपथ लेती है। मैं सदैव आपके साथ रहने और आपके पदचिन्हों पर निरंतर चलने को तैयार हूँ। एलिन और मोटे द्वारा रॉकी के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद लिलिया ने भी उसके सामने घुटने टेके और अपनी शपथ ली। इसके साथ ही लिलिया, एलिन और मोटे तीनों ने रॉकी के प्रति वफादारी की शपथ ले ली। इसके बाद से वे रूंस के गुरु के अधीन सबसे बहादुर, चतुर और वफादार तिकड़ी के रूप में जाने गए, और इसी क्षण उनकी किंवदंती का जन्म हुआ। साथ ही इन तीन दिग्गजों को यह नहीं पता होगा कि कई वर्षों बाद आज उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की थी, उन्हें भले और ढाल की शपथ, हृदय और इच्छा की शपथ तथा शाश्वत शपथ के रूप में जाना जाएगा, और वे आकाश के हर कोने में फैल जाएंगी तथा सभी प्रतिज्ञाओं के लिए मानक बन जाएंगी। बेशक ये सब अब से कई वर्षों बाद घटित होगा, और उस समय न तो वे तीनों और न ही रॉकी, जिसे बाद में रूंस के मास्टर के रूप में सम्मानित किया जाएगा, ये जानते थे कि भविष्य उनके लिए क्या लेकर आएगा। वर्तमान रॉकी बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए उसने अपने सामने घुटने टेकने वाले तीनों लोगों को खड़ा होने में मदद की, और बदले में उनमें से प्रत्येक को नगर के स्वामी की ओर से आलिंगन दिया। ठीक है, अब गंभीर मामलों पर बात करने का समय आ गया है। तीनों को गले लगाने के बाद रॉकी ने अपने भाषण की झड़ी लगा दी। वास्तव में उनके पास उनके भविष्य के विकास के बारे में कई विचार थे, जिसमें थंडरहॉक सिटी, वे आसमान में कैसे जीवित रहेंगे, और यहां तक कि मैनारून। संक्षेप में रॉकी के पास कई विचार थे, लेकिन इससे पहले वह सिर्फ लिलिया पर ही भरोसा कर सकता था। हालांकि हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है, और लिलिया भले ही रॉकी को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वह हर चीज में माहिर नहीं थी, इसलिए वह हमेशा रॉकी की मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन अब चीजें बेहतर हो गई थी। न केवल रॉकी के पास लिलिया थी, बल्कि उसके पास एलिन और मोटे भी थे, इसलिए वह अपने कई विचार उनके साथ साझा कर सकता था। इसलिए इसके बाद उन चारों ने अनुसंधान प्रयोगशाला में बिना किसी रहस्य या योजना के खुलकर बातचीत की। दिन रात सभी प्रकार की चीजों के बारे में बात की, तात्कालिक योजनाओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में समान रूप से उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की। इस गहन बातचीत के बाद रॉकी को ये बात स्पष्ट हो गई कि उसे आगे क्या करना है और वह इसे कैसे करेगा। साथ ही बातचीत के कारण एलिन और मोटे के साथ उसका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया। इसलिए जब अगला दिन आया तो ऐसा लग सकता था कि थंडरहॉक सिटी में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन चुपचाप हो रहे थे। उदाहरण के लिए गार्ड कोर को एक नया प्रशिक्षक मिल गया था। ये प्रशिक्षक स्वाभाविक रूप से मोटे था। दरअसल रॉकी का विचार था कि मोटे लिलिया का स्थान ले ले और गार्ड्स का नया कैप्टन बन जाए, जिसकी लिलिया को भी उम्मीद थी, लेकिन ये धीरे धीरे होना था। मोटे लिलिया से भिन्न था। लिलिया नगर के स्वामी की निजी रक्षक थी और उसकी स्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से उसे सभी का सम्मान प्राप्त था। साथ ही उसकी ताकत और सुंदरता के कारण जब उसने गार्ड कोर का कार्यभार संभाला तो ये परिवर्तन सहज था। हालांकि मोटे थंडरहॉक शहर में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आया था। हालांकि वह लिलिया से ज्यादा ताकतवर था, फिर भी प्रतिष्ठा के मामले में वह उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। उसे सीधे गार्ड्स का कप्तान नियुक्त करने से मोटे के लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी हो जाती। इसलिए रॉकी ने एक उपाय सोचा। उसने मोटे को गार्ड कोर में प्रशिक्षक के रूप में काम शुरू करने दिया। इस तरह गार्डों को प्रशिक्षण देते हुए वह उनके दिलों में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित कर सकता था, जिससे अंततः कैप्टन के पद पर उसकी पदोन्नति का रास्ता खुल गया। इस बीच जब मोटे थंडरहॉक सिटी गार्ड्स के लिए नए प्रशिक्षक बन गए और गार्ड कोर को प्रशिक्षण देना शुरू किया, तो प्रशिक्षण कक्षाओं ने अंततः कुछ गति प्राप्त करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि प्रशिक्षण कक्षाओं में शुरुआती रुचि न होने के बावजूद रॉकी द्वारा पंजीकरण की समय सीमा तय करने के बाद लोगों ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया। हालांकि संख्या ज्यादा नहीं थी, केवल एक दर्जन या उससे भी कम प्रतिभागी थे, फिर भी परिणाम एलिन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था और उसे हैरान कर गया। आप इस रणनीति को बिक्री की तरह समझ सकते हैं। जब एलिन ने रॉकी को अपनी उलझन बताई तो उसने जवाब दिया, कल्पना कीजिए यदि किसी उत्पाद की कीमत हमेशा के लिए कम हो जाए तो लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस पर हमेशा के लिए बिक्री है ना? वे उसे कभी भी खरीद सकते हैं जब उन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता हो। लेकिन यदि कोई उत्पाद सीमित समय के लिए बिक्री पर हो, तो लोगों की खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि यदि वे अभी नहीं खरीदते हैं तो बाद में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। यही सिद्धांत प्रशिक्षण कक्षाओं पर भी लागू होता है। पंजीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित करने से स्वाभाविक रूप से निवासियों की नामांकन की इच्छा बढ़ जाती है। तो यह ऐसे काम करता है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? रॉकी के समझाने के बाद एलिन ने स्थिति को समझा और सोच विचार कर सिर हिलाया। खाना कैसा चल रहा है? इस बिंदु पर रॉकी ने पूछताछ की। ओह, सब कुछ ठीक हो गया है। हम अगले महीने से निवासियों को पहले जैसी ही कीमतों पर खाना बेचना शुरू कर देंगे। जब सारा खाना निवासियों को बेच दिया जाएगा तो पैसा वापस आ जाएगा और अगली तिमाही के लिए धागा खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा। इटर्नल सिटी छोड़े हुए एक सप्ताह बीत चुका था और रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही शहर में भोजन पहुंचा दिया था, जबकि एलिन ने इन सभी मामलों को ठीक से प्रबंधित किया था। उत्कृष्ट! एलिन की रिपोर्ट सुनकर रॉकी ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि उसने थंडहॉक शहर में सुधार शुरू कर दिए थे, लेकिन वास्तविक परिणाम देखने में समय लगेगा, इसलिए इस बीच शहर को बिना किसी गड़बड़ी के पुराने तरीके से काम करते रहना होगा। वैसे, रॉकी ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे एक और बात याद आ गई। एजोर कॉमर्स गिल्ड से कोई खबर? वे जल्द ही आ रहे होंगे, है ना? जल्द ही। एजोर कॉमर्स गिल्ड का उल्लेख करने पर एलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले ही संदेश भेज दिया है, उन्हें एक सप्ताह में भोजन के साथ आ जाना चाहिए और टीम का नेतृत्व करने वाली वह जियाशी है। अच्छा, तो फिर मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। एलिन को देखने के बाद रॉकी हंस पड़ा। अनंत शहर छोड़ने के बाद थंडहॉक शहर में सब कुछ सामान्य हो गया और सब कुछ सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहा था। हालांकि वास्तविकता में थंडहॉक सिटी में सूक्ष्म परिवर्तन चुपचाप हो रहे थे, जिन पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया क्योंकि वे बहुत छोटे थे। संभवतः केवल वे लोग जो इन परिवर्तनों को संचालित कर रहे थे, वे ही सब कुछ महसूस कर सकते थे जो हो रहा था, लेकिन ये परिवर्तन वास्तव में हो रहे थे। रॉकी के प्रति वफादारी की शपथ लेने वाले मोटे ने सफलतापूर्वक अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। वह थंडहॉक सिटी गार्ड स्क्वाड का नया प्रशिक्षक बन गया और लिलिया की मदद से गार्ड कोर का लक्षित प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसी समय चमड़ा शिल्पकला प्रशिक्षण वर्ग भी शुरू हो गया था। प्रशिक्षण वर्ग के लिए पंजीकरण समाप्त होने पर पहले सत्र में प्रतिभागियों की संख्या 13 पर ही रुक गई, यानी 1000 की आबादी वाले शहर में लगभग 1% आबादी ने ही प्रशिक्षण में भाग लिया। ये संख्या रॉकी और एलिन की अपेक्षा से काफी कम थी, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण वर्ग निर्धारित समय पर शुरू हुआ और थंडहॉक सिटी के आर्थिक सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया गया। शायद ये कदम छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी यह उठाया गया। थंडहॉक सिटी इस तरह चुपचाप बदल रही थी, एक ऐसा बदलाव जो अभी प्रभावी नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जल्द ही सभी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा। जहां तक शहर के राजा रॉकी की बात है, वह इन दिनों काफी व्यस्त था। हालांकि शहर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, फिर भी वह बहुत व्यस्त था क्योंकि वह अपने अगले लक्ष्य की तैयारी कर रहा था। जैसे उसने पहले भी राक्षसों के सफल शिकार के लिए पूरी तैयारी की थी, रॉकी ने अब अपना अगला लक्ष्य भाड़े के सैनिकों के संघ के कार्यों को बनाया। मोटे गार्ड कोर के लिए जो प्रशिक्षण दे रहा था वह इसी उद्देश्य से था और इसी वजह से वह भी काम के बोझ तले दबा हुआ था। उसे शहर के गार्ड कोर के लिए रून उपकरणों का एक बैच स्वयं ही तैयार करना था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रॉकी ने हजारों स्वर्ण सिक्के खर्च करके बड़ी मात्रा में नकली जादुई ऊर्जा उपकरण खरीदे थे, ताकि इन नकली वस्तुओं का उपयोग सच्चाई को छिपाने के लिए किया जा सके तथा इस अवसर का उपयोग मैना रून्स के कार्य का उपयोग करने के लिए किया जा सके। और उसे जो करना था वह था नकली जादुई ऊर्जा उपकरण पर सच्चे रूनों को अंकित करना। लेकिन ये तो 100 से भी अधिक उपकरण हैं। 100 ढालों के साथ साथ कवच के 100 सेटों के साथ रॉकी को सभी 200 उपकरणों पर रून्स अंकित करने थे, और प्रत्येक उपकरण पर केवल एक या दो रून्स नहीं, बल्कि उन्हें वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक उपकरण पर पर्याप्त संख्या में रून्स अंकित करने थे। मन पॉइंट्स के रूपांतरण के अनुसार एक छोटे मैजिक स्टोन में 40 ऊर्जा मान पॉइंट्स के बराबर मन होता है, जबकि एक प्रथम स्तर के मैजिक एनर्जी रून का ऊर्जा मान केवल 1 पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई रून उपकरण के किसी टुकड़े को 1 स्टार के प्रभाव तक पहुंचाना चाहता है तो उसे उस पर कम से कम 40 प्रथम स्तर के रून अंकित करने होंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है। एक उपकरण के लिए 40 रून्स की जरूरत होती है, 10 के लिए 400, 100 के लिए 4000 और 200 के लिए 8000। इतने सारे रूनों को अंकित करने के विचार से रॉकी का सिर घूम गया और उसे प्रथम स्तर के रूनों की सीमाओं का एहसास हुआ, जो ये थी कि उनमें बहुत कम मन होता था। अगर रॉकी ने अब लेवल 2 मन रूनों में महारत हासिल कर ली होती तो उसका काम बहुत आसान हो जाता, क्योंकि लेवल 2 मन रून में निहित ऊर्जा मान 15 अंक होता है। इसका मतलब है कि उसे 1 स्टार मैजिक एनर्जी गियर का प्रभाव प्राप्त करने के लिए उपकरण पर केवल 3 लेवल 2 रून अंकित करने होंगे। दुर्भाग्य से रॉकी अभी तक दूसरे स्तर के रूनस नहीं सीख पाया था। उसका जादू का स्तर बहुत कम था और केवल तीसरे स्तर के जादूगर ही दूसरे स्तर के मन रूनस लिख सकते थे, जबकि रॉकी अभी भी पहले स्तर का जादूगर था। इस स्थिति में उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं था और उसे ईमानदारी से प्रयोगशाला में रहकर दिन रात रूनस लिखना पड़ता था। लेकिन सौभाग्य से थंडरहॉक शहर में उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए उसे चिंता करने की जरूरत थी, और लिलिया, एलिन और मोटे की मदद से उसे शहर के छोटे मोटे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे वह एक मेहनती छोटे कार्यकर्ता के रूप में शांति से काम कर सका। और जैसे जैसे दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, पलक झपकते ही एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बाद थंडरहॉक सिटी के स्काईपोर्ट पर अचानक 5 स्काईशिप आ पहुंचे, जो सभी व्यापारी जहाज थे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ये 5 व्यापारी जहाज धीरे धीरे स्काईपोर्ट में उतरे। कुछ ही देर बाद एक आदमी भीड़ से घिरा हुआ जहाज से उतरा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियाशी था, और ये 5 जहाज एजियोर कॉमर्स गिल्ड के अनाज परिवहन जहाज थे। दरअसल रॉकी के इटर्नल सिटी से लौटते ही उसे एजियोर कॉमर्स गिल्ड के आने की खबर मिल चुकी थी। नहीं, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने एजियोर कॉमर्स गिल्ड से अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि जब तक उसने यह फैसला लिया, एलिन ने रूबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सारा अनाज खरीद लिया था। फिर भी रॉकी ने एजियोर कॉमर्स गिल्ड के लोगों को आने दिया। क्यों, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता था? कम से कम रॉकी तो यही मानता था। जब वह व्यापारी जहाज से उतरा और उसके साथ भीड़ थी, तो जियाशी की मुस्कान गायब हो गई और वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। वह जहाज से उतरा तो पाया कि वह जगह खाली थी, उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। इस दृश्य ने जियाशी को स्तब्ध और पूरी तरह से अप्रस्तुत कर दिया। उनके अनुमान के अनुसार थंडरहॉक सिटी में उनके आगमन पर स्वागत पिछली बार की तुलना में और भी अधिक भव्य होना चाहिए था। यहां तक कि उन्होंने ये भी अपेक्षा की थी कि सिटी लॉर्ड रॉकी स्वयं वहां आएंगे। आखिर इस बार वह अनाज तो ला रहा था। क्या दुनिया में अनाज से ज्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान देने लायक कोई चीज है? इसके अलावा पिछली बातचीत के बाद जियाशी को लगा कि थंडरहॉक शहर का नगर स्वामी, अगर वह मूर्ख न हो तो यह अंदाजा लगा लेगा कि सूट की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अनाज की कीमतें भी बढ़नी तय हैं। क्या नगर स्वामी को यह नहीं समझना चाहिए था कि उससे कृपा करना कितना जरूरी था? आखिरकार उसके एक शब्द से थंडरहॉक सिटी संभावित रूप से हजारों स्वर्ण सिक्कों को बचा सकता है। इस कारण से जियाशी ने एक छोटी सी चाल चली थी। उसने जानबूझकर अपने आगमन में कुछ दिनों की देरी कर दी थी ताकि थंडरहॉक सिटी चिंतित हो जाए और इस प्रकार उसके आगमन पर उसे अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त हो। लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि थंडरहॉक सिटी में उनका स्वागत इतना फीका था। वहां उनसे मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। आप यहां आइए। एक क्षण की स्तब्ध चुप्पी के बाद जियाशी ने गुस्से से गार्ड को बुलाया, फिर गुस्से से पूछा, तुम्हारा सिटी लॉर्ड कहाँ है और उस एलिन का क्या? वे मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? जिस गार्ड को उसने बुलाया था वह कोई और नहीं बल्कि स्काईपोर्ट का इंचार्ज फेली था। जियाशी की भयावह उपस्थिति को देखते हुए फेली ने घबराई हुई मुस्कान के साथ उसे जल्दी से शांत करने की कोशिश की। ओवरसियर जियाशी, नाराज मत होइए। सिटी लॉर्ड और वित्त अधिकारी आज बहुत व्यस्त थे, इसलिए वे आपसे मिलने नहीं आ सके। हालांकि प्रभु ने एक गाड़ी का प्रबंध कर दिया है और हमें आदेश दिया है कि जैसे ही आप पहुंचे हम आपको नगर प्रभु के भवन में ले जाएं। जैसे ही वह बोल रहा था एक गाड़ी जियाशी के सामने आकर रुकी, जो स्पष्ट रूप से वहां उसका इंतजार कर रही थी। हम्फ, गाड़ी को अपने सामने देखकर जियाशी ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, पर उसे पता था कि वह यहां काम के सिलसिले में आया है, इसलिए वह नाराजगी के भाव के साथ गाड़ी में चढ़ गया। हालांकि गाड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने अपना मन बना लिया था। उसने रॉकी को झटका देने के लिए अनाज की कीमत 10% और बढ़ाने का फैसला किया। उसका गुस्सा शांत करने का यही एक तरीका था।